ओम शांति। आईज ओपन मेडिटेशन थोड़ा आपने पहली बार ही शायद सुना होगा, बट कोशिश करके आंखें खुली ही रखें, कुछ भी हो आंखें बंद ना करें। तो हमने देखे थे कुछ कारण कि क्यों हार्ट का रिलैक्सेशन पीरियड कम होता है, जिस वजह से हमारा हृदय हर बीट से पहले ही टायर्ड होता है और उसके अंदर फिर धीरे धीरे बीमारियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये हार्ट का जो डायग्राम है इसमें एक राइट साइड को हमने ब्लू दिखाया है और लेफ्ट साइड को हमने रेड दिखाया है। राइट साइड को ब्लू दिखाने का मतलब है कि इसके अंदर जो खून आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिना ऑक्सीजन का खून है, जिसे आप गंदा खून कह लीजिए। और लाल साइड जो दिखाया है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको रेड इसलिए दिखाया है क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंप्लीट रिप्लेनिश्ड हुआ हुआ है, इसको फ्रेश ब्लड आप कह लीजिए। तो राइट साइड हार्ट का क्या करता है काम, बॉडी के ऊपर के भागों से और बॉडी के नीचे के भागों से, इन दो बड़ी ब्लड वेसल्स के द्वारा इस एरिया में, इस चेंबर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बिना ऑक्सीजन का खून आता है। फिर यहाँ से इस वॉल्व जैसा कुछ अपैरेटस है, इस वॉल्व जैसे अपैरेटस के थ्रू ये इस चेंबर में जाता है और यहाँ से इस आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर जाता है। ये देखें, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स ने खून में से ऑक्सीजन उठा ली है और ये जो खून आया ऊपर से और नीचे से, इधर वाली राइट अपर चेंबर में, फिर राइट लोअर चेंबर में, फिर आर्टरी के थ्रू लंग्स में इसने ऑक्सीजन उठाई, फिर लेफ्ट अपर चेंबर और लेफ्ट लोअर चेंबर से एक एओर्टा करके आर्टरी होती है, उसके थ्रू पूरी बॉडी में। तो आप देखेंगे हार्ट के चार चेंबर्स हैं, हार्ट के दो हाफ्स हैं, राइट और लेफ्ट हाफ, और चार चेंबर्स। ऊपर की दो चेंबर्स को बोलते हैं एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और नीचे की दो चेंबर्स को बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और आप ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का सर्कुलेशन है, राइट हाफ हार्ट का एक साथ काम करता है, लेफ्ट हाफ एक तरह का काम करता है। ये डबल सर्कुलेशन है, बॉडी से खून आता है राइट साइड में, राइट साइड से लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन उठाता है, फिर लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड से फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो इसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और आप ये देखें कि लेफ्ट साइड की जो वेंट्रिकल की, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार है इसकी मोटाई देखें, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है इसकी थिकनेस देखें। ये राइट वेंट्रिकल की दीवार की थिकनेस सिर्फ 3 मिलीमीटर की होती है, 3 मिलीमीटर, और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है ये होती है 10 मिलीमीटर। तो ये जो दीवार है 3 गुना ज़्यादा थिक है इस राइट वेंट्रिकल से। इसका कारण क्या है, क्योंकि राइट साइड को लंग्स को ही खून पहुंचाना है, राइट साइड के हार्ट को पंप करके ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है उसे, यहीं पे हार्ट है छाती में और यहीं पे लंग्स हैं, तो कम प्रेशर से भी काम चलेगा। तो नेचर ने क्या किया, इस चेंबर को पतला बनाया, इस मसल की दीवार को पतला बनाया, तो जितना इसको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना है कि ये लंग्स में आए और लंग्स से वापस हार्ट में आ जाए। और ये वाली जो दीवार है इसको बहुत थिक बनाया है क्योंकि इसको पंप करना है और उतना प्रेशर क्रिएट करना है कि पूरी बॉडी में खून घूम जाए, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा काम करना है। तो जब ये लेफ्ट वाली दीवार कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, ऊपर वाला बीपी जिसको आप बोलते हैं 120-80, जो हम बोलते हैं फिगर, किसी का 140-80 है, किसी का 150-100 है। तो ये जो ऊपर वाला फिगर कहाँ से आ रहा है, वो ये वाली दीवार पैदा करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंप करके प्रेशर पैदा करती है, इसको हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। और जैसे जैसे ये ब्लड जाता है इस आर्टरी के थ्रू, एओर्टा के थ्रू जाता है और फाइनर आर्टरीज में डिवाइड होता चला जाता है, तो एक जनरेशन आता है ब्लड वेसल्स का जिनको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं। आर्टेरियोल्स में जो बैक प्रेशर खून को मिलता है, अगर मोटे पाइप से छोटे पाइप के अंदर पानी को पुश करेंगे तो एक बैक प्रेशर होगा ना, तो आर्टेरियोल्स के लेवल पे जो बैक प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। जो नीचे वाला बीपी है आपका, 80 का फिगर है, किसी का 90 का फिगर है, वो वहाँ से आता है। तो नीचे वाला ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को शो कर मतलब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को शो करता है, ये वाली दीवार ज़्यादा थिक है, ये वाली ज़्यादा थिन है। दैट मीन्स अगर इस दीवार को कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ, लेफ्ट साइड के हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि ये दीवार मोटी है, ज़्यादा काम करती है, अगर इसको डैमेज होता है हार्ट अटैक की वजह से या किसी भी कारण से, तो ये आपको ज़्यादा कैटास्ट्रफिक होगा, ये ज़्यादा डैमेजिंग होगा कंपेयर टू राइट साइड। तो 3 मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर, यहाँ पे प्रेशर 120, सिस्टोलिक वाला जो प्रेशर बनता है यहाँ से बनता है। पूरी बॉडी में खून सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चेंबर है वो ये वाली चेंबर है, और बीच में दो वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये इन दोनों आर्टरीज के भी वॉल्व होते हैं, ये एओर्टा के लिए और ये पल्मोनरी आर्टरी के लिए, इनको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं। और अभी आप ये देखेंगे कि किसी भी इमारत के अंदर बिजली का कनेक्शन भी होता है और पानी का कनेक्शन भी होता है, पानी की पाइपलाइन भी होती है और बिजली की तारें भी होती हैं। तो इस इमारत में जो बिजली का कनेक्शन है, देखिए हार्ट एक ऐसा टिश्यू है बॉडी का जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि इसमें एक इनहेरेंट पल्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का एक अपने आप एक इसको पल्स रीजनरेट करने का मैकेनिज्म है इसके पास, जिसकी वजह से ये अपने आप एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। तो राइट एट्रियम का एकदम जो ये वाली आर्टरी वेन जो आती है सुपीरियर वेना कावा, इसके यहाँ पे एक एरिया होता है, टिश्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं एस ए नोड, सीनू एट्रियल नोड। इसकी इनहेरेंट रिदम होती है 60 से 90, इस टिश्यू की प्रॉपर्टी है, ये अपने आप इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करता है, ये अपने आप डीपोलराइज होता रहता है और इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, इससे हार्ट के पूरे हार्ट के धड़कने की गति तय होती है। ये जितनी बार इलेक्ट्रिक करंट छोड़ेगा उतनी बार हमारा दिल धड़केगा। तो इसकी नॉर्मल स्पीड है 60 से 100, बट एवरेज हम 70 से 80 नॉर्मल मानते हैं। तो यहाँ से जो करंट जनरेट होता है, दोनों ऊपर की चेंबर्स में कोई तारे नहीं है, अपने आप टिश्यू के द्वारा वो करंट फैलता है, मसल के टिश्यू के अंदर ही वो करंट फैलता है। और फिर है एक एवी नोड, एसए नोड और ये एवी नोड। ये एवी नोड क्या करता है? ये बेसिकली एक रिले का काम करता है, या करंट के सर्किट को डिले करता है। जो करंट यहाँ से आया, इसको करंट को आगे जाने के लिए, नीचे वाले हार्ट के हिस्से में जाने के लिए इसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये करंट को डिले करता है, फिर इसको हम बोलते हैं बंडल और बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिज और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड देन ये पर्किंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे थोड़ा डिले होके करंट फिर इनके द्वारा नीचे की तरफ मूव करता है। इसलिए जब हमारा हार्ट पंप करता है तो कैसे पंप करता है? ऊपर वाला हार्ट पहले धड़कता है, फिर नीचे वाला धड़कता है, सिंक्रोनस एक्शन, एक साथ नहीं धड़कता है। ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ धड़क गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उस वो फंक्शनल नहीं है। तो पहले खून क्योंकि ऊपर की तरफ आता है, इधर से इधर आया और इधर चार पल्मोनरी आर्टरी से इधर आया, इस वाले खून को पहले इधर आना जरूरी है, फिर यहाँ से वो यहाँ जाएगा इनके थ्रू। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, पहले ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि करंट पहले ऊपर फैलता है, फिर ये करंट को डिले करता है और फिर यहाँ से नीचे से पंप करता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है। तो ये एक प्रॉपर एक्शन है। तो कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक आने से ये वाला टिश्यू जो है हमारा, फाइबर्स हैं, ये भी कई बार डैमेज हो सकते हैं। कई बार इनके अंदर की कोई बीमारी हो जाती है जो इस कंडक्टिंग सिस्टम को असर कर देती है, तो फिर आपको पेसमेकर लगवाना पड़ेगा। जिनको भी पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है हार्ट अटैक के बाद या फिर बिना हार्ट अटैक आए भी, वो आपके कंडक्टिंग सिस्टम की डिस्टरबेंस है। और कंडक्टिंग सिस्टम के ऊपर ये जो लाल तार और हरी तार का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ज़रा सी कोई बात आती है, आपका दिल एकदम से धड़कने लग जाता है, कोई ख़राब खबर मिलेगी, ज़रा सा गुस्सा आएगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, isn't it? तो ज़रा सी भी सिंपथेटिक ड्राइव आपकी होगी ऊपर, तो ये एकदम से पंप करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू योर माइंड। यहाँ पे एक वेगस नर्व आती है जो इसकी गति को डिसाइड करती है, इसको पैरासिम्पथेटिक टोन भी बोलते हैं। एथलीट्स जो होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उन लोगों की हार्ट रेट, उनका हार्ट की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि 35 टाइम्स उनका हार्ट एक मिनट में बीट करता है। 40-45 नॉर्मल है उनके लिए। तो हमारा दिल जो 70-80 बार धड़क के काम करता है, उनका दिल 40 बार धड़क के ही वो काम करता है। उनकी वेगल टोन इतनी अच्छी होती है। और वही मैंने आपको बताया, आपके अंदर अगर ओबिसिटी होगी तो क्या होगा, हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट को सपोर्ट करने के लिए हार्ट को 100 ml खून ज़्यादा पंप करना पड़ेगा पर मिनट। मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है हार्ट, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप ओवरवेट हैं तो हर 1 किलो के लिए 100 ml एक्स्ट्रा, अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो आपको 1 लीटर आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले 5 लीटर रिक्वायरमेंट थी, अब 6 लीटर रिक्वायरमेंट है। 20 किलो ओवरवेट हैं तो 2 लीटर एक्स्ट्रा पंप करेंगे। अभी 70-80 बार धड़क के आपका दिल 5 लीटर खून पंप कर रहा था, अभी 6 लीटर खून पंप करने के लिए 70-80 बार में तो काम होगा नहीं, हो सकता है क्या? क्योंकि खून तो उसने इतना ही फेंकना है, चैम्बर का साइज़ तो उतना ही है। पर स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में, एक पंप में कितना ml खून फेंकेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो अभी उसको 6 लीटर पंप करना है, 1 मिनट का समय है, बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी है 6 लीटर की। तो अभी 70-80 में नहीं, अभी उसको 100 बार धड़कना पड़ सकता है, 90 बार धड़कना पड़ सकता है। ज़्यादा ओवरवेट है तो ज़्यादा धड़कना पड़ेगा। तो क्या हुआ, नेचुरली आप ओवरवेट है तो आपकी धड़कन बढ़ती जाएगी, आपका रिलैक्सेशन पीरियड कम होता जाएगा। मोटापा इट्सेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, इज़न्ट इट? तो ये हमारा हार्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम है। फिर वॉल्व के लीकेजेस भी होते हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जैसे बताया था कि किसी भी इमारत के अंदर पानी की सप्लाई भी चाहिए आपको, तो हार्ट को जो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम को 1 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट है, 250 ग्राम का अगर ये है तो 250 ml खून की इसको रिक्वायरमेंट है पर मिनट। बॉडी की रिक्वायरमेंट 5 लीटर, इसकी रिक्वायरमेंट 250 ml। तो इसको सप्लाई करने के लिए 3 पाइपलाइन है मेन, तीन भी क्या, मेन तो 2 ही हैं, लेफ्ट सिस्टम और राइट सिस्टम। ये है राइट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के राइट साइड को सप्लाई करती है, और यह है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, LAD जिसको बोलते हैं। इसको आप ध्यान से समझो, आपको आपकी एंजियोग्राफी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी। ये है LAD, ये है LCX, और ये है लेफ्ट मेन, और ये है RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी हार्ट के 70% टिश्यू को खून देती है, 70% मसल मास को खून देने वाली ये आर्टरी है। राइट कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के 30% टिश्यू को खून देती है। लेफ्ट मेन डिवाइड होती है LCX में और LAD में। LAD हार्ट के 40-50% टिश्यू को खून देती है और LCX 20-30% को खून देती है। तो यानी मेजर आर्टरी अगर हम 2 कहें, क्योंकि हमने 3 गिन लिया इनको, तो LAD इज़ अ मेजर आर्टरी और लेफ्ट मेन इज़ अ मेजर। लेफ्ट मेन एक मेजर कहेंगे, अगर इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, इसके ब्लॉकेज की वजह से मैसिव हार्ट अटैक होगा, सर्वाइव करना बहुत रेयर चांस होता है। वो बोलते हैं अटैक हुआ इमीडिएटली मर गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, पर्सन डाइड ऑन द स्पॉट, बैठे बैठे बात करते करते कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। बिकॉज 70% टिश्यू चला जाता है एक साथ हार्ट का, हाउ विल यू रिवाइव दैट पर्सन, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही है 40-50% LAD जिसको हम बोलते हैं, इसको भी डैमेज हुआ क्योंकि ये हार्ट के आगे के हिस्से के और लेफ्ट साइड को खून देती है। तो मैंने बताया वो मेजर एरिया है हार्ट का, अगर इसको डैमेज हुआ तो क्या होगा, ये भी एक मेजर एरिया जाता है हार्ट का, इसको हम विडोज़ आर्टरी भी बोलते हैं, विधवा बनाने वाली आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं। फिर ये LCX जो 20-30, और ये है RCA। अभी किसी भी आर्टरी का ओरिजिन जब होता है, देखिए ये जो पार्ट है ये ओरिजिन का पार्ट है आर्टरी का, ये एओर्टा से निकल रही है, एकदम यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से LAD शुरू हो रही है, इस ओरिजिन को हम बोलते हैं ऑस्टियम, ऑस्टियल। तो आपकी आपकी एंजियोग्राफी में लिखा होगा ऑस्टियल, कहीं पे अगर किसी को ब्लॉक होगा शुरुआत में तो वो ऑस्टियल ब्लॉक बोलते हैं, ऑस्टियल नैरोइंग बोलते हैं। फिर कुछ लैंडमार्क्स होते हैं अलग अलग, D1 D2 जैसे इसमें है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्साइमल सेगमेंट। फिर उसके बाद वाले को, शुरुआत के सेगमेंट को बोलते हैं प्रोक्साइमल, उसके आगे वाले सेगमेंट को बोलते हैं मिड, और उसके नीचे वाले सेगमेंट को बोलते हैं डिस्टल। तो आपकी एंजियोग्राफी आपने देखी होगी तो उसमें लिखा है प्रोक्साइमल, नॉर्मल, मिड में इतना बड़ा ब्लॉक है, डिस्टल में इतना बड़ा ब्लॉक है, कुछ ध्यान आ रहा है, एंजियोग्राफी पढ़ी होगी। तो हर आर्टरी को हम मिड ऑस्टियल, प्रोक्साइमल, मिड और डिस्टल में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, जितना प्रोक्साइमल और लेफ्ट मेन को भी रफली। तो जितना प्रोक्साइमल ब्लॉक है, ऑस्टियल ब्लॉक है, तो क्या होगा, ऑस्टियल ब्लॉक की वजह से या प्रोक्साइमल ब्लॉक की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस आर्टरी की पूरी टेरिटरी नीचे की डैमेज होती है। दैट इज मेजर, वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू समथिंग विच इज़ डिस्टल। अगर यहाँ पे डिस्टल ब्लॉक है, ये सारा नॉर्मल है, तो जो डैमेज होगा वो उससे कम होगा। तो किस एरिया में आपको ब्लॉक है, कितना इम्पॉर्टेंट वो ब्लॉक है, वो भी हमको देख के पता लगता है। एंड ये जो तीनों सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम्स नहीं है, इनकी जो सप्लाई है ओवरलैप करती है। आप देखिए ये LCX और LAD के बीच में ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। तो अगर इधर ब्लॉक है, सपोज यहाँ पे LAD के प्रोक्साइमल में आपको 100% ब्लॉक आ गया, पर LCX से, RCA से, इधर से, इन ब्रांचेस के थ्रू इस नीचे वाले एरिया की पूर्ति हो जाएगी, इसको ब्लड मिलेगा, क्योंकि ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। ये क्या बोलते हैं हम इनको, कोलेट्रल्स बोलते हैं, जिसको बोला जाता है नेचुरल बाईपास। अगर आपके कोलेट्रल्स वेल डेवलप्ड हैं तो इंस्पाइट ऑफ आपकी तीनों आर्टरीज में 100% ब्लॉक्स हों, पर क्योंकि कोलेट्रल्स बन गए हैं, आपके हार्ट को ब्लड की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, आपको थकान नहीं होगी। ऐसे कितने ही हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं 100%, 95, 90, 100, 95, 100, 100, 16 ब्लॉक्स हैं, पर दे हैव गुड कोलेट्रल्स, और कोलेट्रल्स होने की वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको सपोज कोलेट्रल्स आपके वेल डेवलप्ड हैं, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट का कुछ हिस्सा मर जाता है। क्यों, कैसे मरता है, क्योंकि सपोज यहाँ पे ब्लॉक था, इधर ब्लॉक हुआ, कोलेट्रल्स नहीं थे, ये एरिया नीचे का मर गया, डेथ हो गई उस टिश्यू की, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अभी वो डेथ हो गई उस टिश्यू की, तो पहले हार्ट की जो पंपिंग पावर थी, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग पावर होती है 60-65%। पंपिंग पावर मतलब जितना ब्लड आया उसका कितना प्रतिशत वो बाहर फेंक देगा, इसको बोलते हैं EF। आपके 2D एको के अंदर आपने रिपोर्ट देखा होगा, आपका EF कितना है आपसे पूछा जाता होगा, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। इजेक्ट होने का कितना फ्रैक्शन होगा, कितना फ्रैक्शन ब्लड इजेक्ट हो जाएगा हार्ट में से। तो EF जो है नॉर्मल 60-65% होता है। हार्ट अटैक आने के बाद क्योंकि पंप का कुछ हिस्सा मर गया, तो ये पंपिंग पावर ख़त्म हो जाती है, वो 60-65 से 50 आ जाती है, 50 के नीचे आने लगती है तो वो फेलियर की तरफ जाने लगती है, 40 के नीचे आने के बाद फिर वो फेलियर में ही आने लग जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, और नीचे आए, 30 आए, 20 आए, बैठे बैठे आपको ब्रेथलेसनेस महसूस होगी। पंप है लंग, हार्ट के पीछे क्या है, अगर आप उसका सर्कुलेशन का डायग्राम देखें तो पहले लंग्स है, फिर हार्ट है, फिर बॉडी है, तो पानी का फ्लो हो रहा है। पंप को लंग्स से पानी उठा के बॉडी में फेंकना है। अभी पंप कमज़ोर हो गया तो क्या होता है, लंग्स से ब्लड उठा के बॉडी में नहीं फेंक पाता है, तो पंप के पीछे खून इकट्ठा होने लग जाता है, तो लंग्स के अंदर पानी भरने लगता है। बैठे बैठे जो ब्रेथलेसनेस की महसूसता होती है हार्ट फेलियर के पेशेंट को, वो यही है बेसिकली, उसके बैठे बैठे उसके लंग्स में पानी भर रहा है। ज़रा सी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, हार्ट डीकम्पनसेट कर जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, तो हार्ट अटैक से ये प्रॉब्लम आती है। पर अगर आपके कोलेट्रल्स अच्छे डेवलप्ड हैं, हार्ट अटैक आ भी गया ना आपको, तो भी आपका हार्ट का टिश्यू मरेगा नहीं, बच जाएगा, इतना डैमेज नहीं होगा। जहाँ एक व्यक्ति को कोलेट्रल्स नहीं होंगे उसका 20% हिस्सा जाएगा, आपका 5% भी नहीं जाएगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है जिनके कोलेट्रल्स अच्छे होते हैं, फिजिकली जो लोग एक्टिव होते हैं उनके इवन आफ्टर हार्ट अटैक उनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो कोलेट्रल्स डेवलप अगर हम कर लेते हैं तो हमारी बहुत सेफ्टी है। कोलेट्रल्स डेवलप करना हमारे हाथ में है, उसके लिए हमें किसी से कोई कुछ करने पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें, एंजियोग्राफी दिखाई है, ये देख आप, ये छोटे छोटे फाइन वेसल्स देख रहे होंगे, ये दीज आर नथिंग बट कोलेट्रल्स। यहाँ पे दिखाया सडन नैरोइंग। एंजियोग्राफी में हमें कैसे पता लगता है आपका ब्लॉक किधर है, आप ये देख रहे हैं, इस पाइप का डायमीटर देखिए, एक डाई डालते हैं, रेडियो पे एक डाई डाली जाती है, रेडियल आर्टरी के थ्रू या फेमोरल आर्टरी के थ्रू और एक्सरे लेते हैं. दिस इज व्हाट एंजियोग्राफी इज. एक्सरे ही निकाला जाता है हार्ट का, धड़कते हुए दिल का. और यहाँ पे देख रहे हैं सडनली एक फिलिंग डिफेक्ट आ गया है. यहाँ पे ज़्यादा डायमीटर है, यहाँ पे सडनली नैरो हो गई है. यानी इस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ तो ब्लॉक है जिसकी वजह से डाई के फ्लो में इफेक्ट पड़ा है. तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ तो ब्लॉकेड है, पर बिकॉज यहाँ पे कोलेट्रल्स अच्छे बने हुए हैं इस व्यक्ति के, इसकी पीछे से फिलिंग होती रहेगी. अगर ये 100% भी कट हो गया ना तो भी इसके इधर के टिश्यू को खून मिलता रहेगा. ये इंटर आर्टीरियल है, दो आर्टरीज के बीच में आप देख रहे हैं कोलेट्रल है. यहाँ पे आप देखें एक ही आर्टरी के बीच में भी इंटर आर्टीरियल भी है, एक ही आर्टरी के सिस्टम के अंदर भी बन जाते हैं. कई बार यहाँ पे अगर ब्लॉक आ गया तो ये कवर करेगा. तो अभी कोलेट्रल्स कैसे बनते हैं, ये जो कोलेट्रल्स है ना बहुत सेंसिटिव है, ये भी इसको रिएक्ट करते हैं लाल तार और हरी तार को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को. ज़रा सा आप इमोशनल हो जाइए कोलेट्रल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. हमारी आर्टरीज के अंदर मसल्स होती हैं, मसल्स की लेयर होती है और एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम बंद हो जाते हैं. अगर आप खुश नहीं रहते हैं, अगर आपको बार बार इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, आपका मूड ख़राब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, डेवलप नहीं होंगे. अगर हैं भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और आपको प्रॉब्लम कर देंगे. और अगर आप खुश रहते हैं, इमोशनली किसी से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो आप क्या होगा, आपके कोलेट्रल्स वेल डेवलप्ड रहेंगे. तो इमोशंस से थोड़ा बचने की ज़रूरत है. और कोलेट्रल्स आप कैसे डेवलप करोगे, कोलेट्रल्स जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं ना 70, 80, 90, 100, उनके अंदर कोलेट्रल्स ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं. और जो यंग ब्लॉक्स होते हैं 30, 40, 50% वाले, उनके अंदर इतने कोलेट्रल्स नहीं डेवलप हुए होते हैं. तो यंग ब्लॉक्स हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, मैं वो आपको आगे भी बताऊंगा, एक और रीज़न है. पर क्या होता है, धीरे धीरे जब किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन की कमी होती है ना बॉडी में, तो अपने आप बॉडी वहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनाती है, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं इसको. तो जब आप वॉकिंग करना शुरू करते हैं, जो आपको यहाँ पे कराई जा रही है रेगुलर, जब आप वॉकिंग करते हैं जितनी कैपेसिटी हो, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी. तो जब आप वॉकिंग करते हैं तो आप हार्ट के टिश्यू पे डिमांड देते हैं, और डिमांड देने की वजह से वहाँ पे उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है. और क्योंकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे वॉकिंग करा रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली ऑक्सीजन डिमांड जो है एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है, आपके कोलेट्रल्स उससे डेवलप होते हैं. तो आपके लिए वॉकिंग इज़ अ मस्ट, इट इज़ नॉट ऑप्शनल. चाहे बरसात हो, चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वॉकिंग ज़रूर करनी है. क्योंकि वॉकिंग करेंगे आप मसल्स को मूव करेंगे, और आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी अफेक्टेड है. वॉकिंग से ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते, और आपको उसके ज़्यादा करना भी नहीं है, आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है. आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी. 7 days में 50 meters जो लोग नहीं चल पाते थे, 2-3 kilometers आराम से चलने लग जाते हैं 7 days में. तो आपको बढ़ाना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, बट डोंट ट्राई टू रन. दौड़ना नहीं है और ना ही वेट लिफ्टिंग करनी है, वो फिट लोगों के लिए. पर ये भी करेंगे तो आपके कोलेट्रल्स वेल डेवलप होंगे. कोलेट्रल्स वेल डेवलप होंगे, नेचुरल बाईपास हो जाएगा, प्रोटेक्शन अपने आप आ जाएगी, डेथ नहीं होगी. LMCA अटैक को भी वो लोग सर्वाइव करते हैं जिनके कोलेट्रल्स होते हैं, जिनके कोलेट्रल्स नहीं होते वो नहीं सर्वाइव कर पाते. और यंग ब्लॉक्स में एक और प्रॉब्लम है कि यंग ब्लॉक्स के ऊपर एक कैप होती है. 30, 40, 50% के जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. उनकी जो कवरिंग होती है, फिब्रिन कैप हम उसको बोलते हैं, वो बहुत कमज़ोर होती है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. और जो पुराने ब्लॉक होते हैं 70, 80, 90 सालों में ब्लॉक्स डेवलप होने शुरू होते हैं, 5 साल के उम्र से ब्लॉक्स बनने शुरू होते हैं. ये जो होते हैं ये फिब्रिन रिच ब्लॉक्स होते हैं, दीज आर वेल डेवलप्ड. और इनकी जो फिब्रिन कैप होती है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आसानी से टूटती नहीं है. तो यंग ब्लॉक्स क्या है, जल्दी से रप्चर कर जाते हैं, ईजिली रप्चर करते हैं. और रप्चर करने से अटैक, जो आर्टरी आपकी 30% ब्लॉक थी सडनली 100% ब्लॉक हो जाती है. और जो पुराने 70, 80, 90 वाले ब्लॉक हैं, इवन 90 और 100 तक तो खैर पूरा ही ख़त्म हो गया, तो वो ईजिली टूटते नहीं हैं. एंजाइना आपको 70% के ऊपर होने लगता है. तो इट इज़ द यंग ब्लॉक्स विच आर मोर डेंजरस रादर देन ओल्ड ब्लॉक्स. मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा. तो ये एंजियोग्राफी को हमने समझा. तो बेसिक इशू इज़ डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच. डिमांड बढ़ती है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ती है तो प्रॉब्लम होती है. अगर आप डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाई अब जितनी है उतनी रहेगी, यानी एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते रहिए, बैठे रहिए, चलिए फिरिए मत, तो भी आपका काम चलेगा. बट वो आपको शॉर्टन नहीं करेगा लाइफ को. तो डिमांड कैसे बढ़ती है? कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, लिफ्टिंग वेट, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, रनिंग. मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हरी सिकनेस, टाइप ए बिहेवियर. टाइप ए बिहेवियर समझते हैं आप? व्हाट इज टाइप ए बिहेवियर? देखिए, टाइप ए बिहेवियर पीपल आर दोज, दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉन्शियस लोग होते हैं. 5 बजे पहुँचना है तो 5 बजे ही पहुँचना है. बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं. एक काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, वो किसी और को काम नहीं देते. दे विल नॉट डेलीगेट वर्क, वो हर चीज़ अपने आप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्हें वो काम परफेक्शन से चाहिए, टाइम पे चाहिए. क्योंकि वो काम डेलीगेट नहीं करते, वो पॉलीफेजिक होते हैं, एक साथ कई सारे काम करते हैं. टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, इस तरह की जिनकी पर्सनालिटी हो जाती है, आप कहने को तो अच्छा कहोगे, आप पंक्चुअल हैं, टाइम पे करते हैं, परफेक्शन से काम करते हैं, पर इन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, 3 गुना ज़्यादा होती है. सो दिस इज़ अ डेंजरस बिहेवियर फॉर हार्ट पेशेंट्स, फॉर बीपी, फॉर डायबिटीज़. अगर आप टाइप ए पर्सनालिटी है तो हैप्पी गो लक्की बन जाइए. आपके टाइम पे पहुंचने से, आपके परफेक्शन से काम करने से किसी का भला नहीं होने वाला, आपका नुकसान होने वाला है. अगर आप अभी तक ऐसे हैं तो अपनी इस नेचर को बदल दीजिए. ये ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज, बट करना पड़ेगा. क्योंकि नहीं करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा, वेदर आपके ऑफिस में काम करने वाले लोगों पे, चाहे आपके बच्चों पे. आपको जैसे वो करते हैं उनको आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी. आप सोचें कि हम अपने तरीके से चला लेंगे तो चलेगा नहीं. आप 60-70 साल की ज़िंदगी होती है, हम सोचते हैं मेरी वाइफ ऐसे करे, मेरा बच्चा ऐसे करे, मेरा पति ऐसे करे, मेरे माँ बाप ऐसे करे, मेरे भाई बहन ऐसे करे, मेरे एम्प्लॉयज़ ऐसे करे, सड़क पे ट्रैफिक ऐसे चलना चाहिए, मोदी जी को ये करना चाहिए, ट्रंप को ये करना चाहिए, हवा ऐसे बहनी चाहिए, सूरज ऐसे उगना चाहिए. होगा क्या? होने वाला है? आप अपने आप को बदल लो, वही सबसे बड़ी बात है. ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है. आदमी खुद को भी नहीं बदल पाता, किसी और से तो आप बदलने की इच्छा रखो ही मत. क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मेरा बच्चा ऐसे करे, मेरी बीवी ऐसे करे, या मेरा पति ऐसे करे, नहीं होने वाला. आप लोग एक दूसरे के साथ आए हो एक दूसरे को हर्ट करने के लिए. ये कलयुग है, सत्ययुग नहीं है. तो यहाँ पे संबंध संबंध नहीं है, बंधन है. वो कर्म सिद्धांत समझोगे तो समझ जाओगे. मैं नहीं बोलता, मैं बैचलर हूँ इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है. मैं सुखी हूँ थोड़ा बहुत अभी. तो ये जो कंट्रोल, अब हमें सिर्फ खुद को बदलना है. और ये भी मत समझिए कि मेरे साथ दिल की बीमारी हो गई तो अब क्या करूं मैं. एक चीज़ है लाइफ, मैंने हर बार ये बोलता हूं, क्योंकि ये पर्सनली सीखा है, लाइफ गिव्स यू व्हाट यू नीड, नॉट व्हाट यू डिज़ायर. ज़िंदगी आपको वो देती है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ना कि जिसकी आपको इच्छा है. ज़िंदगी थप्पड़ मारती है ना, वो भी हमें ज़रूरत है उसकी. माँ जैसे बच्चे को थप्पड़ मारती है उसको सुधारने के लिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं, ज़रूरी है, नहीं तो बिगड़ जाएगा. तो ज़िंदगी भी हमें लगाती है कई बार, तो हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है. जब तक हम उसको रेजिस्ट करते हैं तब तक समस्या, वो प्रॉब्लम हमारे लिए है. जिस दिन हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ऐसे ही हैं, सड़क चलता आदमी हमें कुछ कहेगा ना, कोई असर नहीं पड़ता हमको. पर जब घर वाले ही कुछ बोलते हैं तो दुख होता है, क्योंकि हम उनसे दिल से जुड़े हुए हैं. आपके, आपने कुछ खाना बनाया, आपके पति को पसंद नहीं आया, नमक ऊपर नीचे हो गया, टेस्ट ऊपर नीचे हो गया, उसने बोल दिया, मतलब कुछ भी बोल दिया आपको, आप पूरी रात जागते रहोगे, किसका नुकसान हो रहा है? वो तो बोल के चुप हो गया, नुकसान किसका हो रहा है? ऐसे ही आपका है भाई. आपने बच्चे को कुछ कहा, उसने नहीं सुना, आप सोचते बैठते रहो, क्या होगा, फ़ायदा किसका है? तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है, हमारे कर्म सिद्धांत, कर्मों के हिसाब से ही हमें मिल रहा है. ये दुनिया कर्म सिद्धांत पे चल रही है. एक बाल भी कोई आपका नहीं ले सकता अगर आपने उसको डैमेज नहीं किया है तो. तो जिनको सबसे ज़्यादा खुशी दी है, और जिनको सबसे ज़्यादा सुख दिया, और जिनको सबसे ज़्यादा डैमेज किया है, वो आज हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन बन के आ जाते हैं. और ये कहानी चलती रहती है. फैक्ट है, वही ज़िंदगी को स्वर्ग भी बना सकते हैं, वही ज़िंदगी को नर्क भी बना सकते हैं. और कोई नहीं कुछ कर सकता, बाहर वाले की पावर नहीं है. ये घर वालों को पता होता है कहाँ पे कौन सी दुखती रग पे हाथ रखना है रिस्पॉन्स एलिसिट करने के लिए. अगर वो, और दूसरे को थोड़ी पता है आपके अंदर के राज क्या हैं. तो इसीलिए जितना हो सके इस चीज को थ्योरम को एक्सेप्ट कर लें कि लाइफ गिव्स यू व्हाट यू नीड नॉट व्हाट यू डिजायर. इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है पर ज़रूरत ज़रूर पूरी होती है और कई बार हमारी ज़रूरत होती है ये. तो ये बीमारी भी हुई तो ये आपकी ज़रूरत ही थी. इसको डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट, डोंट टेक इट एज कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, कुछ हमने किया उसका नतीजा है. पर अगर ये बीमारी मेरे लिए कारण बन जाती है कि मैं खुद से जुड़ जाऊँ, अपने आप को जान लूँ और मैं परमात्मा को समझ लूँ, तो इससे बड़ा वरदान भी कोई नहीं है. तो दिस डिजीज़ कैन बी अ ब्लेसिंग ऑल्सो. और आप अगर खुद बदलेंगे तो आप पता नहीं हज़ारों लाखों लोगों को बदल देंगे. इट इज़ बिकॉज वो आपका कन्विक्शन होगा. मेरे कहने से लोगों को विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर गुप्ता के कहने से लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर जिस व्यक्ति ने खुद अपनी आर्टरीज खोली हैं वो जब खड़ा होकर बोलता है ना, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे कहने का नहीं होता है. तो जब आप उस कन्विक्शन के साथ जाके बोलेंगे, पता नहीं आप कितनी ज़िंदगियाँ बदल देंगे. तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है. दिस कैन बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग बिकॉज ये बीमारी, अगर आप रियलिटी में इसको ठीक करना चाहते हैं, आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यूनिवर्सल लॉज को. और यही हमारा लाइफ का पर्पस भी है कि हम उसको समझें, हम समझें ये दुनिया कैसे चल रही है. तो टाइप ए बिहेवियर की हम बात कर रहे थे. एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट वेदर इज़ ऑल्सो नॉट गुड. ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी अपने आप को बचाएं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती हैं. तो आपको बताया था कि जो हार्ट की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, डिमांड और सप्लाई कैसे मैच होती है. डिमांड बढ़ती है तो हमारी जो आर्टरीज हैं डायलेट करती हैं, ये नॉर्मल से 5 से 6 गुना खून सप्लाई कर सकती हैं. अगर 5 लीटर खून पंप कर रही हैं तो डायलेट करके फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस जब आता है, फिजिकल डिमांड बढ़ती है या मेंटल स्ट्रेस की वजह से डिमांड बढ़ती है, आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, स्टिफ नहीं होती हैं, दे आर लाइक इलास्टिक रबर बैंड, वो फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और ये 5 गुना खून सप्लाई कर सकती हैं, 5 से 6 गुना. अगर हार्ट को 250 ml खून चाहिए तो ये 1500 ml खून दे सकती है. नॉर्मल आदमी में पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 1 मिनट में 5 लीटर है, वो ऑलमोस्ट 30-35 liters तक भी दे सकता है, पंप कर सकता है. और जो वेल सीजन एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जो साइकिलिंग करते हैं, ये लोग, इनकी, इनका हार्ट इतना अच्छा होता है, 50 लीटर से ज़्यादा ब्लड पंप कर सकती हैं, दे आर सो एफिशिएंट. तो व्हेन द आर्टरीज आर इलास्टिक, आपकी बॉडी क्या कहते हैं, डिमांड को मैच कर सकती हैं सप्लाई बढ़ा के. अभी क्या होता है, आर्टरीज को हम इलास्टिक से प्लास्टिक स्टिफ कैसे बनाते हैं, जब भी ये कुछ चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ओबिसिटी है, मोटापा, नमक हम ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी जो नॉर्मल आर्टरी होती है स्टिफ आर्टरी बन जाती है. इसके अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है. अभी जो पहले फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आ रहा था तो क्या हो रहा था, अपने आप बड़ी हो गई, डायलिटेशन हो गया. अभी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आया, सेम सिचुएशन, नो डायलिटेशन, आर्टरी ने डायलेट नहीं किया. इन फैक्टर्स की वजह से हमारी एंडोथेलियम डिस्टर्ब होके यहाँ पे कुछ ब्लॉक भी पैदा हो जाते हैं. अभी डायलेट नहीं हुई तो क्या हो गया, 70% से जब ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं मिल पाती है हार्ट को, तो हमें पेन फील होता है, विच इज़ एंजाइना. आप 1 किलोमीटर चलेंगे, 800 मीटर चलेंगे, आपको पेन फील होगा, हैवीनेस फील होगी, आप बैठ जाएंगे 2-3 मिनट, या एक एंटीजी की गोली खा लेंगे, सॉर्बिट्रेट की गोली खा लेंगे, पेन चला जाएगा, फिर आप चलेंगे, फिर 800 मीटर चलेंगे, फिर आपको हैवीनेस होगी, पेन होगा, आप बैठ जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर गोली ले लिया. दिस इज़ स्टेबल एंजाइना. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी करने के बाद आपको पेन होता है, ठीक है, ये स्टेबल एंजाइना है. अभी क्या होता है, इसके एंजाइना होता है, फिर कुछ इसमें हमारे इमोशंस आ गए, फियर, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें क्या करती हैं, ये जो है फियर, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये क्लॉट पैदा करती हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ाती हैं, क्योंकि ये सिंपथेटिक ओवरड्राइव पैदा करती है, लाल तार को स्टिमुलेट करती है. और सिंपथेटिक ओवर एक्टिविटी में हमारी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, और ये जो है ना हमारी आर्टरी की वॉल भी, क्योंकि इसके अंदर मसल होती है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करने का जो इसका एक्शन होता है बहुत सडन होता है. सडनली आपको फियर हो गया, सडनली एकदम से गुस्सा आया, तो वो सडन चेंजेस होते हैं हमारी आर्टरी की डायमीटर के अंदर, लूमन के अंदर, वॉल के अंदर, विच टेंड्स टू, जो मैंने आपको बताया था फिब्रिन कैप होती है किसी भी ब्लॉक के ऊपर, एक कैप होती है, ये एरिया होता है शोल्डर जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ता है उस समय, और ये क्रैक कर जाता है, रप्चर कर जाता है, इसकी कैप टूट जाती है और अंदर से आर्टरी के इस ब्लॉक के अंदर से ब्लीडिंग होती है। जैसे स्किन पे कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है अपने आप फिर रुक जाती है, आप देखते हैं लाल खून इकट्ठा होकर जम जाता है, इसको थ्रॉम्बस बोलते हैं और वो खून को रोक देता है। ऐसे ही आर्टरी के अंदर खून तो बह रहा है पर क्योंकि दीवार में घाव आया, वो फटा अंदर से, तो अंदर से ब्लीडिंग होती है। और जो इस तरह की ये पैथोलॉजिकल चीज़ हो गई, नॉर्मली फ्लो करता हुआ ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, पर बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स उसकी क्लॉट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ी हुई है क्लॉट करने की, साथ में एक फिजिकल इंजरी और हो गई, वो इंजरी हुई, रप्चर हुआ या इरोजन हुआ, दो चीज़ें होती हैं, इरोजन थोड़ा माइल्ड होता है, रप्चर एकदम कैटास्ट्रफिक होता है। तो रप्चर हुआ सपोज, तो ब्लीडिंग होगी और सारा का सारा ब्लड इकट्ठा होके एक जगह क्लॉट हो जाएगा। ये अगर खाली 30% भी था, अच्छे से खून फ्लो कर रहा था, बट सडनली वो क्लॉट होगा और 100% ब्लॉक हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ट अटैक। तो ये ब्लॉक से कभी भी आपको अटैक नहीं आता है, इट इज़ द क्लॉट विच कॉजेज एन अटैक। तो अगर आपको ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स, ब्लॉक्स विल गिव यू एंजाइना, बट इट इज़ द क्लॉट विच कॉजेज अ अटैक। अब ये क्या है, टोटल ऑक्लूजन सडन होना, रप्चर से हम इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और कई बार इरोजन हो जाता है, थोड़ा सा डैमेज होता है उस कैप को, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, 100% अक्लूड नहीं होता है, तो उस केसेस में हम बोलते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दो चीज़ें होती है, अनस्टेबल एंजाइना होता है और एनस्टेमी होता है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, वो अलग चीज़, वो समझने की ज़रूरत नहीं है, बट अनस्टेबल एंजाइना को आप समझ सकते हैं कि जैसे बताया 800 मीटर आपने एक्टिविटी की फिर पेन हुआ, अनस्टेबल एंजाइना में बैठे बैठे चेस्ट पेन हो जाता है, इट इज़ मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सडनली आपको चेस्ट पेन हो गया, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना के केस में हमें इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, इलास्टिक आर्टरी स्टिफ बन जाती है और स्टिफ आर्टरी इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हार्ट अटैक को पैदा करती है। अभी ये दिखाया है हार्ट का आर्टरी का ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें आउटर लेयर, इन तीन लेयर्स होती हैं आर्टरी की, आउटर लेयर होती है एडवेंटिशिया, ये एक फाइब्रस लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है जो बहुत मोटी होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है जो रिस्पॉन्ड करती है इन फैक्टर्स को, जिससे आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ल्यूमन छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, डायलेट करना या कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर इंटीमा, और फिर इसके अंदर होती है एंडोथिलियम। ये एंडोथिलियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंगल सेल्ड लेयर है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पतली सी लेयर होती है, और अगर एंडोथिलियम ठीक से काम कर रही है तो आपकी आर्टरी में कुछ भी नहीं जम सकता। जो अंदर की स्किन मैंने बताई थी शुरुआत में आपको, हर बॉडी के अंग के अंदर एक स्किन होती है, तो ये अंदर की स्किन है, और इसको अगर डैमेज हुआ, एंडोथिलियल डिसफंक्शन शुरू हुआ, उस पॉइंट से आपकी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पैदा होना शुरू हो जाएगा। अभी एंडोथिलियल डिसफंक्शन कैसे होता है, आपको हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली एक लैमिनार फ्लो होता है, खून की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करती हैं बहुत स्मूथली, पर जब हमारा बीपी बढ़ता है तो क्या होता है, बिकॉज ज़्यादा फोर्स होती है ब्लड के, हार्ट सिस्टोल में ज़्यादा फ्लो पैदा करता है, ज़्यादा प्रेशर पैदा करता है, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो होने से इस दीवार के ऊपर शियर स्ट्रेस पड़ता है, एक होता है स्ट्रेस ऐसे पड़ना परपेंडिकुलर, शियर स्ट्रेस होता है इस तरह का स्ट्रेस, तो ये वॉल को क्या कहते हैं, ज़्यादा डैमेज करता है। हाई बीपी हमारी एंडोथेलियल डिसफंक्शन पैदा कर सकता है। फिर है, आपने स्मोकिंग की, कितने लोगों ने लाइफ में स्मोकिंग की है या करते हैं या छोड़ दी, है कोई? ओके, तो देखिए एक सिंगल टोबैको स्मोक जब आप करते हैं, सिगरेट पीते हैं, पहले डेटा कहता था 35 मिनट के लिए आपकी एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, 35 मिनट्स के लिए। अभी क्या है, एंडोथिलियम नॉन स्टिकी कैसे रहती है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है ENOS, वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है, जब तक वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन ठीक से रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, हमारी आर्टरी को खोल के रखती है, डायलेट करती है, खुला रखती है और नॉन स्टिकी बना के रखती है। तो जब तक ये प्रॉपरली काम कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब जो स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, उससे 35 मिनट के लिए एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता था। पहले डेटा ये कहता था, यानी एंडोथेलियम डिस्टेबलाइज हो गई, 35 मिनट तक आप आर्टरी ब्लॉक कर रहे हो। आपने 10 सिगरेट पी तो आपने 350 मिनट तक आर्टरी अपनी ब्लॉक करी, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जाएगा। अभी का जो लेटेस्ट डेटा है, रिसेंटली मैंने पढ़ा, एंडोथेलियम एक सिगरेट पीने के बाद एंडोथेलियम जो है रिकवरी उसकी शुरू होती है 24 घंटे के बाद। मतलब सिंगल सिगरेट विल कॉज एंडोथेलियल डीस्टेबलाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, और वो स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है आफ्टर 24 आवर्स। तो हाउ, ओके, अभी ये ट्रैफिक कंट्रोल है। तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन इज द मेन कल्प्रिट। सिगरेट कितनी डेंजरस है, टोबैको किसी भी फॉर्म में कितना डेंजरस है, आप समझ सकते हैं। अभी जो हवा है हमारी कैसी हो गई है, हवा में कितना पोल्यूशन है। गुड़गांव दिल्ली साइड अगर आप जाएं तो क्या वो डैमेज नहीं कर रही होगी। ऐसे ही एक बार, चलो ये तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए, आउटसाइड फैक्टर्स हो गए। अ सिंगल एपिसोड ऑफ एंगर, गुस्से का एक एपिसोड बॉडी में इस तरह के कैस्केड्स पैदा करता है कि 5 दिनों तक आपकी ये जो आर्टरीज हैं ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता रहता है। चिंता का एक एपिसोड 18 घंटे तक, सॉरी गुस्से का 72 आवर्स और चिंता 18 घंटे का। मतलब दिस कॉजेज एंडोथेलियल डिसफंक्शन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ये जो इमोशंस हैं आपके, अगर हम इनको चेक में नहीं रख पाएंगे, बार बार सिंपथेटिक एक्टिविटी करते रहेंगे, हो क्या रहा है, ये सिंपथेटिक एक्टिविटी आपका बीपी बढ़ाएगी, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल लोड बढ़ेगा और ये डायरेक्टली जाके आपकी एंडोथेलियम को डिसफंक्शन करेगा, एंडोथेलियम को अफेक्ट करेगा और आर्टरी स्टिकी बन जाएगी, प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे एंड इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द ब्लड वेसल। तो अब यही दिखाया है कि यहाँ पे ब्लॉक होना शुरू हो गया है। इट इज़ नॉट अ डेड थिंग, इट इज़ अ डायनेमिक प्लाक। और ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स दिखाए हैं इनको बोलते हैं वासा वासोरम। और अगर ये ब्लॉक बढ़ता जाएगा तो ये जो छोटे वाले ब्लड वेसल्स, जो वासा वासोरम, जो इसकी दीवार को सप्लाई करते हैं, आर्टरी की दीवार को सप्लाई करते हैं, ये खुद भी बड़े हो जाते हैं। ये अपने आप बड़े होके, जो मैंने आपको बताया नेचुरल बाईपास है, कोलेट्रल्स में बदल जाते हैं ये भी, अगर आप उनको मौका दोगे तो। तो इस तरह से हमारी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं। और ये दिखाया है वही, ये 70%+ का ब्लॉक है, इसके अंदर क्या होगा, डिमांड बढ़ने पे सप्लाई नहीं मिलेगी और एंजाइना होगा। और ये छोटा ब्लॉक है 30-40% का, क्योंकि इसकी ये कैप स्टेबल नहीं है, ये क्रैक हो जाती है। क्रैक होने के बाद, रप्चर होने के बाद 100% ब्लॉक होके ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये चीज़ें, हरी सिकनेस, लैक ऑफ लव, आइसोलेशन, एंगर, ईगो, फियर एंड इनसिक्योरिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, सिंपथेटिक ओवरड्राइव पैदा करती हैं, लाल तार को एक्टिवेट करती हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन। हमारे खून में कुछ सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, जो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं। इनकी एग्रीगेट करने की, इकट्ठे होने की टेंडेंसी को, स्टिक करने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। और फाइब्रिनोजन, कुछ इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं और सडनली ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइसोलेशन की अगर हम बात की जाए तो आज की डेट में कितने लोग हैं जो अपनी सारी बातें अपनी स्पाउस को बता देते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो पूरा टोटल शेयर करते हो अपने स्ट्रेसेस को, करते हो? चलो इंडियन सोसाइटी है, और विदेशों में तो कुत्ते रखने पड़ते हैं, बिल्ली रखनी पड़ती है बात करने के लिए, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं होता है। और आज की परिस्थिति भी यही हो गई है, हम मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा बात करते हैं बजाय के आपस में घर के मेंबर्स के साथ। हम हज़ारों लोगों से जुड़े हुए हैं, सब वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड हार्डली कोई है, क्योंकि वर्चुअल से टाइम ही नहीं मिलता है। तो रियल के साथ कहाँ बैठे और कहाँ बात करें। तो आइसोलेशन एक बहुत डेंजरस इमोशन है। जो लोग आइसोलेटेड होते हैं, इट इज़ सीन कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, वो लोग कम जीते हैं। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, तो बेटर है एक एक कुत्ता पाल लो घर में, दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूट. उससे सारी बातें करो, कुछ कहेगा भी नहीं, कुछ भी बोलो कोई ताना नहीं सुनने को मिलेगा, मस्त है. बट ज़रूरी है कि शेयर करें. पर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वो बैठा है ऊपर, यू कैन ट्रीट हिम लाइक एनीथिंग. एज इट इज़ हम भगवान को गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं, तो लेट्स कंटिन्यू. अपना सारा गंद उसको दो, सारा जहर अपना उसके सामने उगल दो. आफ्टर ऑल नीलकंठ, उसने टाइटल ऐसे ही तो लिया नहीं है, जहर पीता है ना वो हम सबका. सब कुछ बता सकते हो बिना जज किए, बिना विदाउट फियर ऑफ जजमेंट. ही विल नॉट जज यू. एंड यू कुछ भी करके जाओ, अपने आप से भी नफरत करोगे पर उसको बताओगे तो उससे नफरत नहीं मिलेगी, उससे प्यार ही मिलेगा. ऐसा हमको बनना है, बट दैट इज़ अ वेरी टॉल ऑर्डर, हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. बट इसीलिए डॉक्टर गुप्ता ने बताया होगा राइट लेटर टू गॉड, डेली वेंटिलेट करना है. और एक्चुअल में उसी को ही वेंटिलेट कर सकते हो. किसी को भी बताओगे लोग जज करते हैं ओवर द ईयर्स, फिर वो आपकी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, वैल्यू देना आपको बंद कर देते हैं. तो ओनली पर्सन यू कैन शेयर विद इज गॉड. अगेन व्हाट डिड आई से, ओनली पर्सन. सी राजयोग मेडिटेशन इज नॉट अबाउट गॉड एंड अस, इट इज़ अबाउट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट विद गॉड. उसको जब तक हमने भगवान की तरह समझेंगे ना, वो हमसे उतना ही दूर रहेगा. उसे एज अ पर्सन अपनी लाइफ में लाओ, एक इंसान की तरह उसे अपने जीवन में लेके आओ. जितना हक आपने अपनी वाइफ को दिया, अपने हस्बैंड को दिया है, अपने बच्चे को दिया, उतना हक उसे दो और उतना हक उस पर रखो तो वो करेगा. पर हम उसे वो हक देते नहीं है, हमने उसे भगवान बना के, परमात्मा बना के अपने आप से बहुत दूर कर दिया है. वो भगवान बनना नहीं चाहता, वो परमात्मा बनना नहीं चाहता, वो तुम्हारा बाप बनना चाहता है, वो तुम्हारा पति बनना चाहता है, पत्नी बनना चाहता है, दोस्त बनना चाहता है, बच्चा बनना चाहता है. तो उसके साथ वो रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी आर्टरीज खुलेंगी. मैंने कहा ना, इफेक्ट प्रूफ होना है, इमोशन प्रूफ होना है. कोई कुछ बोलता रहे, कितना ही निकट संबंधी हो, कुछ भी बोलता रहे, उसका असर नहीं होना चाहिए मुझ पर. वो तभी होगा जब उससे जुड़े हुए होंगे. अगर उससे नहीं जुड़े होंगे तो असर होगा. ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ, काम धंधा भी अच्छा चल रहा है, हेल्थ भी अच्छी है, बच्चे भी बहुत अच्छे निकल गए, पैसा भी खूब है, इज्जत भी खूब है, मैं मस्त हूँ, आनंद में हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. ये आइडियल सिचुएशंस हैं, कोई भी खुश होगा. पर काम धंधा भी ख़त्म हो गया, बच्चे भी नहीं सुनते, हेल्थ भी ख़राब हो गई, पत्नी भी नहीं सुनती, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, समाज में भी थू हो रही है, पर फिर भी मस्त हूँ, आनंद में हूँ, मज़े से सोता हूँ, मज़े से खाता हूँ. बात उसमें है, उस व्यक्ति ने जीवन जीने की कला सीखी है. बाहर कुछ भी होता रहे, अपने अंदर का एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए. कोई कुछ ही बोलता रहे, आपके ऊपर कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए. इतना आपका मजबूत किला होना चाहिए. वो तभी होगा जब आप उससे जुड़ोगे, जब आप, मैंने बताया ज्ञान सबसे इम्पॉर्टेंट है. आत्मा के सारे गुणों में ज्ञान ही है, ज्ञान ही एक गुण है बेसिकली. बाकी तो सब चीज़ें ज्ञान से ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. तो जब ज्ञान समझ जाएंगे तो अपने आप वो स्थिति आ जाएगी. तो यहाँ पे आपको साइंस समझाई जा रही है, पर ये जो पॉजिटिव टीम बनाने का जो पार्ट है ना, टीम पॉजिटिव तभी होगी जब आप अध्यात्म को अपने जीवन में लेके आओगे. और अध्यात्म को जीवन में लाना कोई अलग काम नहीं कर रहे हो, हम आध्यात्मिक ही हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स ही हैं, हम मटीरियल बीइंग्स नहीं हैं, हम बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस बीइंग्स नहीं हैं. हम कहते हैं भाई गुस्सा मेरी नेचर है. गुस्सा कितनी देर कर लोगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे तो गुस्सा नहीं कर सकते, 24 घंटे तो अशांत नहीं रह सकते. पर 24 घंटे आप प्रेम कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, 24 घंटे खुश रह सकते हो. तो हमारी नेचुरल नेचर है पीस, लव एंड हैप्पीनेस. हमने ये एक्वायर किया है. किसी छोटे बच्चे को आप उस स्टेट में नहीं देखते हो, वो हमेशा ही पीस लव एंड हैप्पीनेस में रहता है. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी के हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमें कुछ एजुकेशन मिलती है हमारे आसपास बड़ों से, और हम समझने लग जाते हैं दुनिया ऐसी है, एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली. तो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. ये आपने एक्वायर किया है, अपनी ट्रू नेचर को समझना है. बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शरीरधारी से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे या किसी से या किसी बड़े से. आपको अपने अंदर जाके खुद को देखना है, और सिर्फ परमात्मा से प्रभावित होना है, और किसी से नहीं होना. परमात्मा खुली छूट देता है सवाल पूछने की. इंसानों को अगर देख के आधार बनाओगे तो फिर दुख पाओगे. इसलिए नो एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ फ्रॉम एनीवन. किसी से अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो ही हम खुश रह सकते हैं, तो ही ठीक रह सकते हैं. अगर ज़रा सी भी एक्सपेक्टेशन कहीं पे रहेगी, वो आपको दुखी करने वाली है. अभी एंजियोप्लास्टी क्या होती है, लास्ट का ये पार्ट है, समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक है, हमने गाइड वायर डाला, गाइड वायर के ऊपर एक इन्फ्लेटेबल बलून रहता है, उस बलून को एक्सपैंड कर दिया, बलून को निकाल लिया, हमारी आर्टरी खुल गई। आजकल फिर हम एक इसमें स्प्रिंग डाल देते हैं मेटल का, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं, दैट इज़, ये है एंजियोप्लास्टी का इलाज। ब्लॉक था, वायर डाली, ये छोड़ दिया, क्या बीमारी का इलाज हो गया? हैव वी ट्रीटेड द डिजीज और हैव वी फिक्स्ड द ब्लॉक? हमने ब्लॉक को फिक्स किया है, हमने बीमारी का इलाज नहीं किया, हमने कॉज का ट्रीटमेंट नहीं किया है, कॉज अभी भी वहीं पे है। कॉज के लिए बात करने के लिए ना डॉक्टर के पास टाइम है ना पेशेंट के पास टाइम है। पेशेंट कहता है भाई मेरे को गोली दो ताकि मेरा बीपी ठीक हो जाए, मेरे शुगर ठीक हो जाए, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वॉकिंग करूं या मैं डाइट कंट्रोल करूं। ना डॉक्टर के पास टाइम है कि उसको बैठ के समझाए, क्योंकि उसके पास 50 और आ रहे हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल से टारगेट दिया हुआ है, आपको एक महीने में इतना बिजनेस देना है, इतनी एंजियोप्लास्टी करानी है, इतने बाईपास कराने हैं, इतने MRI कराने हैं, इतने CT स्कैन कराने हैं, इतने इन्वेस्टिगेशन, इतने एडमिशन कराने हैं। वो बेचारा बच्चा डॉक्टर बना था 11th 12th में मेहनत करके, पूरी ज़िंदगी सोचा था डॉक्टर ही करूँगा, उसको सेल्समैन बना दिया है। अब वही बात है, उस सेल्समैन को 30-40 लाख रुपए महीना मिल जाता है तो फिर वो करता है जैसे तैसे भी, और जो नहीं कर पाता वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है। तो डॉक्टरों की भी हालत ख़राब कर दी है कॉरपोरेट्स ने, जब से नंबर्स बना दिया है मेडिकल केयर को, तो ख़त्म ही हो गई है मेडिकल केयर एक तरीके से। आजकल तो एक क्या बोलते हैं, चार्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हो गए हैं हम लोग, हमें स्कोर्स देखने हैं, फिगर्स पूरे करने होते हैं। तो अभी स्टेंट का रेट 30,000-27,000 हुआ था, फिर से बढ़ने वाला है, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। तो ये अभी क्या होता है कि इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं बाईपास, अब स्टेंट भी दोबारा से ब्लॉक हो जाता है। ये है बाईपास, बेसिकली ब्लॉक वहीं पर, हमने एक नया रास्ता बना दिया, या तो वेन ले ली या आर्टरी ले ली, इंटरनल मेमोरी आर्टरी ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी ले सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर सिस्टम है, अगर आर्टेरियल ग्राफ्ट लगवाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेन्स क्या होती है, वेन्स की दीवारें पतली होती हैं, वेन्स थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, दीवारें पतली होती हैं, पर वो इतना ब्लड का प्रेशर और स्ट्रेस नहीं झेल सकती। तो अगर वीनस ग्राफ्ट होंगे तो बाईपास की लाइफ कम होगी, आर्टेरियल ग्राफ्ट अच्छे होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, पर आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाने वाले इंडिया में बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग ही आर्टेरियल ग्राफ्ट लगाते हैं, बहुत फेमस नाम जो हैं वो ही ये प्रोसीजर कर पाते हैं, क्योंकि आर्टेरियल ग्राफ्ट्स आर टाइम कंज्यूमिंग, मोर डिफ़िकल्ट, प्लस अगर आप बाईपास उससे कराओगे तो फिर वो पैकेज वो 3-4 लाख वाला नहीं होगा, 15-20 लाख वाला होगा। तो आर्टेरियल ग्राफ्ट्स की लाइफ अच्छी है। अभी स्टेंट्स के साथ भी क्या है, पहले तो खाली बलून एंजियोप्लास्टी होती थी, फिर बेयर मेटल स्टेंट्स आए, स्टेंट्स के ऊपर दवाई नहीं होती थी, तो वो 50% केसेस में 3-6 महीने में ब्लॉक हो जाते थे। फिर आगे ड्रग इम्प्रेगनेटेड स्टेंट्स या ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, तो उसमें बहुत अच्छी जनरेशन्स आ गई हैं, अभी लेटेस्ट एवरोलिमस स्टेंट्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर स्टेंट्स के अंदर भी क्या होता है, स्टेंट के अंदर ब्लीडिंग का चांस होता है, स्पेशली अप टू 1 month बहुत ज़्यादा चांस होता है, और स्टेंट के आगे और पीछे ब्लॉक पैदा हो जाता है। अगर उस एरिया को वो क्लीन भी रखता है ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, तो स्टेंट के आगे और पीछे भी ब्लॉक पैदा हो सकता है। और इंडियंस में मैंने आपको बताया टेंडेंसी होती है डिफ्यूज़ ब्लॉक्स की, तो कितने स्टेंट डालोगे, एक लोकलाइज्ड एरिया में ब्लॉक है तो वो अलग चीज़ है। तो स्टेंटिंग भी एक तरह से परमानेंट केस नहीं सॉल्व नहीं करता है। दूसरा, अगर हमने इम्प्रॉपर स्टेंटिंग भी है तो स्टेंटिंग भी आर्टरी को डिस्टेबलाइज कर देती है अंदर से। तो ऑल दीज प्रोसीजर्स क्या है, बेसिकली इट इज़ लाइक कटिंग द ट्री फ्रॉम अबव, जड़ें अभी भी अंदर हैं, जड़ों को हमने निकाल के बाहर नहीं फेंका। आपके अंदर ब्लॉकेज क्यों पैदा हो रहा था उसका अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। सो इसके अंदर कंपेयर किया है कि बाईपास और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये देखा गया मॉर्टैलिटी एट 1 year, बाईपास के बाद 8% लोग मरे और इसमें 7% लोग मरे। तो देखेंगे कि सेफ्टी दोनों में एक जैसी है, मेडिकल ट्रीटमेंट और बाईपास कंपेयर करें तो सेफ्टी एक जैसी ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये 22 साल की स्टडी हुई थी, और 22 साल की स्टडी में बाईपास और मेडिकल ट्रीटमेंट वालों को कंपेयर किया गया, यूएस के जो पुराने आर्मी के वेटरन्स होते हैं उनके ऊपर ये स्टडी हुई थी, तो 22 साल के बाद परसेंटेज अलाइव आफ्टर सर्जरी देखें तो 20% ही अलाइव हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट वाले 25% अलाइव हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे है, दवाइयों पे चल रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस्पिरिन, जो नॉर्मल दवाइयाँ आपकी चलती हैं उन पे जो चल रहे हैं, 25% लोग 22 साल के बाद जिंदा है, और जिन्होंने बाईपास करा लिया वो 20% ही जिंदा है। फ्री ऑफ MI बिना हार्ट अटैक के कितने रहे 22 साल के बाद सर्जरी में? 41%, मेडिकल ट्रीटमेंट वाले 57%, और अलाइव विदाउट MI बिना MI के कितने परसेंट जिंदा रहे? 11% सर्जरी में, 18% मेडिकल वाले। तो कौन सा ग्रुप ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया? मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो रहा वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या मतलब सर्जरी हमको नहीं करानी, बाईपास नहीं कराना, एंजियोप्लास्टी नहीं करानी? ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में बाईपास है, एंजियोप्लास्टी है, बहुत अच्छी एडवांसमेंट है। अगर आपको अटैक आया विद इन 12 आवर्स आप पहुँच गए मेडिकल फैसिलिटी पर, आइडियली 3 to 4 आवर्स में पहुँच जाना चाहिए, पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो लाइफ सेविंग है, आपके हार्ट के टिश्यू को मरने से बचाता है। इमीडिएटली पोस्ट अटैक पोस्ट इवेंट आपने करा लिया, आपको अनस्टेबल एंजाइना, मैंने बताया अनस्टेबल एंजाइना में भी थोड़ा इरोजन होता है, वो अटैक में कन्वर्ट कर सकता है। बैठे बैठे चेस्ट पेन होता है तो आप अपनी एंजियोप्लास्टी या बाईपास करवा लें, आपको बेनिफिट होगा। आपको लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो बताई थी 70% हार्ट को खून देती है, लेफ्ट मेन में अगर आपको ब्लॉक है तो आपको करवाना चाहिए बाईपास। स्टेंटिंग बहुत टफ होती है उसकी और हम बुलाते भी नहीं है, अगर लेफ्ट मेन में ब्लॉक होता है तो हम पहले कहते हैं आप बाईपास कराओ या जो भी कराना है वो कराओ, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि अगर वो गया तो आपकी गारंटी नहीं, बचोगे नहीं बचोगे। तो अनस्टेबल एंजाइना है, इमिडिएटली आफ्टर इवेंट आपने करा लिया, या फिर कुछ ऐसे एरियाज में ब्लॉक होता है, ऑस्टियल LAD, प्रोक्साइमल LAD, LCX दोनों है तो LMC इक्विवेलेंट होता है, उस केस में कई बार कराना पड़ता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, या फिर तो इन कंडीशंस के बाद आप क्या कहते हैं करवाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लाइफ सेविंग होगी और आपके हार्ट का मायोकार्डियल टिश्यू बच जाएगा, टिश्यू सैलवेज हो जाएगा। पर अगर आप 12 घंटे के बाद करा रहे हो, स्टेबल पेशेंट है, अटैक आके जा चुका है, अब उसे कोई तकलीफ नहीं है और फिर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराने गए, TMT पॉजिटिव आ गया, TMT पॉजिटिव आया तो एंजियोग्राफी कर दी, एंजियोग्राफी में आपको एक 90% का ब्लॉक आ गया, डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी ऑन टेबल ही कह देता है जी, आपको तो 90% ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी करा लो। अभी आप लॉन टेनिस खेल रहे थे, कल बैडमिंटन खेल रहे थे, अभी आपको ये कह रहे हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास करा लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। स्टेबल डिजीज़ में, स्टेबल एंजाइना में एंजियोप्लास्टी या बाईपास हेल्प नहीं करता है, लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं करता है। 5-10 ईयर सर्वाइवल देखा गया है, इससे कोई भी आपकी सेफ्टी नहीं बढ़ने वाली है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि 70-80-90% के ब्लॉक्स में ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जाती है, 30-40% वाले ब्लॉक्स में नहीं की जाती है। तो स्टेबल डिजीज़ में कभी भी हमको नहीं करवाना है, 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो हमें करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, अगर पेशेंट स्टेबल है, उसको कोई सिम्टम नहीं है तो। या फिर अगर स्ट्रेस थैलियम आप कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स अच्छे होते हैं वो स्ट्रेस थैलियम करवाने को बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट होता है या PET CT करवाते हैं, उसके अंदर अगर रिकवरेबल या सैल्वेजेबल मायोकार्डियम आता है, रिवर्सिबल इस्कीमिया कुछ देखने को मिलता है उनको, तो फिर प्रोसीजर कराने का बेनिफिट है। पर वो खुद ही 15-20-25 हज़ार का टेस्ट हो जाता है तो काफ़ी लोग कराते नहीं है, डायरेक्टली प्रोसीजर ही कर देते हैं। पर उस प्रोसीजर में अगर आपको इंडिकेशन मिलता है कि कराने का फ़ायदा है तो कराएं, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे दिखाया है मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, देखिए मेडिकल और सर्जिकल, पिंक इज सर्जिकल, मेडिकल पहले 3 साल तक तो मेडिकल वाले अच्छे रहते हैं, सर्जरी वाले 3 साल तक थोड़ा सफ़र करते हैं, 3 से 8 साल तक बराबर चलते हैं, फिर सर्जरी वाले डिट्योरेट करते हैं, मेडिकल वाले अच्छे चलते रहते हैं। तो मेडिकल वाले क्यों ज़्यादा अच्छे हैं? क्योंकि मेडिकल वालों को लगता है कि मैंने कुछ कराया नहीं है, वो व्यक्ति ज़्यादा ध्यान रखता है अपना, वॉकिंग करता है, परहेज़ करता है, जो उसके स्ट्रेसेस होते हैं, काम धंधा होता है उसको छोड़ के थोड़ा लोअर लेवल पे रह के खुश रह लेता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर देता है अपनी तो भी खुश रहता है। सर्जरी वाला कई बार सोचता है मैंने तो ऑपरेशन करा लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो पुराने धड़ल्ले से जब चलने लगता है तो उसको वापस वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं प्रॉब्लम आने के बाद, चाहे सर्जरी करा लो या ना कराओ, तकलीफ़ होने वाली है। सर्जरी हो चुकी है, प्लास्टी हो चुकी है, फिर भी अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। 20-20 साल तक लोगों के स्टेंट चले हैं जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, और जो नहीं मेंटेन करते 2-3 महीने में दोबारा ब्लॉक हो जाता है, बाईपास दोबारा से ब्लॉक हो जाता है 2-3 महीने में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपने आप को रखते हैं। मतलब सिचुएशन ये है कि जो लोग मैराथन दौड़ते हैं उनको भी अटैक आते हैं, उनको भी ब्लॉक्स हैं। 2-3 ग्रुप पहले एक पार्टिसिपेंट आए थे, ही रन्स हाफ मैराथन एवरी संडे, और इन बिटवीन जब मैराथन्स होती है वो मैराथन्स भी दौड़ते हैं। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ 48 ईयर्स ऑफ एज, वो एकदम फिट हैं, पर उनको भी 100% ब्लॉकेजेस हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसका बीपी आप 110-70 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, उस व्यक्ति का बीपी 180/110 जा रहा है, और जबकि उसके हार्ट की कैपेसिटी इतनी अच्छी है, बॉडी की कैपेसिटी इतनी अच्छी है, वो मैराथन दौड़ता है। और वो यहाँ पे आए थे, मैंने उनसे बात की काफ़ी देर, मैंने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा एंग्शियस एंग्जाइटी वाले थे। उनसे पहले एक आए थे, ही यूज़ टू रन 8 किलोमीटर्स एवरी डे। तो ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग करने से भी आप सेफ हो, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बहुत कर लो, उससे कोई सेफ्टी हो जाएगी ऐसी भी बात नहीं है। बैलेंस चाहिए, माइंड का भी बैलेंस चाहिए, बॉडी की एक्टिविटी का भी बैलेंस चाहिए, स्पिरिचुअल बैलेंस भी चाहिए। तीनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो ही आप इसको कवर कर पाओगे, जीत पाओगे। और इसके अंदर ये दिखाया है कि ये ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेटा इसमें दिखाया है, इस हिस्टोग्राम में, ये जो आप देख रहे हैं कि लेस देन 50% वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये परसेंट MI है, तो जो ब्लॉक्स 50% से कम होते हैं उसमें 68% हार्ट अटैक्स आते हैं। जो यंग ब्लॉक्स होते हैं 30-40-50% वाले, उनमें 68% हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ब्लॉक्स 50-70% है उनमें 18% हार्ट अटैक आते हैं, और जो ब्लॉक्स 70% से ऊपर है उसमें 14% हार्ट अटैक आते हैं। अभी हम एंजियोप्लास्टी बाईपास नॉर्मली 70% के ऊपर ही करते हैं, 50% के ऊपर भी कुछ केसेस में कर देते हैं, पर नॉर्मली 70% से ऊपर वाले केसेस में ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जाती है। तो अगर आपने अपने 70-80% वाले ब्लॉक्स को फिक्स भी करा लिया तो आपने कितना परसेंट रिस्क कम किया, अटैक का कितना परसेंट रिस्क कम हुआ? 14% रिस्क कम हुआ, 86% तो अभी भी है। तो टाइमली इंटरवेंशन मिले तो बेनिफिट है, अदरवाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही पक्का बेनिफिट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। अगर आप अपनी लाइफ को सकारात्मक तरीके से जीना चाहते हैं तो, और अगर बैठे बैठे दुखी होते होते जीना है, पेन के साथ जीना है, खुद भी डरे रहना है, पूरे घर वालों को भी डरा के रखना है, बच्चों को भी डरा के रखना है, तो अलग बात है, उसमें भी कुछ मज़ा आता है लोगों को। Isn't it? Many people use this as a weapon कि मैं बीमार हूँ, मेरे को कुछ मत कहना, मेरे को ये हो जाएगा। कितने कहते हैं आपके पति कहते होंगे, आई गेस कुछ धीरे धीरे सर हिला रहे हैं हाँ में यहाँ ऐसे डराया जाता है हमको, तो कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है वैसे जी के। जीवन साथी है, डॉक्टर गुप्ता बोलते जीवन हाथी नहीं बनना है हमको। तो ये आई थिंक दिस कम्प्लीट्स द सेशन, एंड डू वी हैव टाइम फॉर डेटा प्रेजेंटेशन, या अभी डिनर के लिए चलना है? 6 हो गया, डिनर के लिए 6:30 बजे डिनर है ना, तो डेटा का दिखा देते हैं एक बार। रेमस LAD और LCX के बीच में कुछ केसेस में हार्ट के सरफेस पे चलने वाली आर्टरी को रेमस बोलते हैं, सब में नहीं होती है, हाँ कुछ में होती है, सब में नहीं पाई जाती है रेमस। बेसिकली जहाँ पे LMCA से LAD और LCX बाइफरकेट कर रही हैं उन्हीं के बीच में से एक आर्टरी निकल रही है रेमस, वो ऊपर ऊपर चलती है, तो उसको हम बोलते हैं। वो भी ब्लॉक है क्या आपकी? सी इट डिपेंड्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको मल्टीपल पेन्स होते हैं, एंड देखो इवन यू इफ यू हैव ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड या ऑस्टियो, देखो ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का भी कारण क्या है? नॉर्मली जो हमारी ये थाई मसल्स होती है ना, इट इज़ लाइक सरिया और सीमेंट होता है, खाली आप सरिये को लगा दीजिए, स्टील रॉड्स को लगा दीजिए, स्ट्रेंथ नहीं है, उसके आसपास कंक्रीट होना ज़रूरी है, तभी उसमें स्ट्रेंथ है। तो जो मसल्स है ना वो कंक्रीट का काम करती हैं। तो ये हमारी जब मसल्स कमज़ोर होती हैं तब हमारे जॉइंट्स पे लोड आता है। तो नॉर्मली हमारा 30-40% लोड हमारे नी जॉइंट पे है, 60-70% लोड हमारी ये मसल लेती है क्वाड्रिसेप्स। तो जब ये वीक होनी शुरू होती है ओल्ड एज में धीरे धीरे, बिकॉज हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, हमें 50 मीटर भी जाना है तो हम एक्टिवा उठा के जाते हैं, चलते फिरते नहीं है, तो ये हमारी वीक होती है तो हमारी नी डैमेज होना शुरू होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अब देखने को आने लगा है, पहले कहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था। आज भी आप सुनते हैं 70-80 साल की लेडीज़ मैराथन दौड़ती हैं, तो जो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा नहीं। और अगर सपोज हो भी चुका है कुछ डिग्री तक हो भी चुका है तो भी आपके लिए फिजियोथेरेपी और वॉकिंग थोड़ी बहुत ये क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस मस्ट हैं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे, ये स्ट्रेंथ गेन करेंगी, जब ये लोड लेना शुरू होंगी तो आपके टिशू को, जो बोन का टिशू है उसको रिलीफ मिलेगा, आप एक्टिविटी कर पाएंगे। और अगर ये नहीं कर सकते तो थोड़ा साइकिलिंग कर सकते हैं, स्टैटिक साइकिल है उसमें रिकम्बेंट बाइक यूज़ करें रादर देन दी अपराइट वन। देर इज़ अ रिकम्बेंट बाइक जिसके बैक पे रेस्ट होता है, एक होता है आप अपराइट बैठते हैं जैसे नॉर्मल साइकिल पे बैठते हैं, एक होती है रिकम्बेंट बाइक जिसमें बैक के लिए रेस्ट रहता है, तो वो आप करें। उससे आप पहले अपनी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएं एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग, आपकी नी भी हील होगी। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जिनको पेन रहता था वो चल नहीं पाते थे, बट आफ्टर धीरे 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 लकड़ा वो होते हैं ना, मतलब लड़खड़ाते हुए भी चलते 2-3 साल में आज वो अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ एक्टिविटी छोड़ दोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के डर से तो और जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो नी रिप्लेसमेंट करा लो, इट्स नॉट लाइक दैट। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ ऑलवेज अ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। सीटी एंजियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, बट अगर हमारी आर्टरी में कैल्सिफिकेशन ज़्यादा है, कैल्शियम स्कोर पहले देखा जाता है, अगर कैल्शियम स्कोर 400 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर सीटी एंजियो फेल है, फिर वो एक्सरे आर्टरी के अंदर नहीं देख पाता कैल्शियम की वजह से। एजिंग का प्रोसेस है बॉडी में कैल्सिफिकेशन होना। और जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ 3D हेल्थ केयर, प्रैक्टिकल मॉडल में जाइए, आपने पावर ऑफ माइंड खोल दिया, प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ 3D हेल्थ केयर इसको बंद कर दीजिए। तो सीटी एंजियो की लिमिटेशन ये है, और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी उसको गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए बोला है, कितना भी कैल्शियम हो वो हमें दिखा देता है कहाँ पे क्या ब्लॉक है, बट कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इज़ अ ल्यूमिनोग्राम, अंदर का ल्यूमन दिखाता है हमको, और सीटी एंजियो से हम उसका क्रॉस सेक्शन भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, मॉडलिंग की जा सकती है हार्ट की, काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो यस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, बट कैल्शियम के केसेस में वो फेल हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन, तो देखिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कर पाते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जहाँ पे आपको तकलीफ होने लग जाती है आपको नहीं करना है। अगर आपके घुटने साथ देते हैं, आपका दिल साथ देता है, एक मंजिल चढ़े, अगर आपसे नहीं चढ़ा जा रहा है, दो स्टेप्स चढ़े, रुके, रेस्ट दें, फिर दो स्टेप्स चढ़े, फिर रुके, रेस्ट दें, और अगर चढ़ सकते हो तो चढ़ो, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक साथ चढ़ने की कोशिश मत करना, वो ज़्यादा डैमेजिंग है। कोई भी एक्टिविटी करना है लिमिटेशन में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन डिपेंड्स कि कितना EF है, कितनी आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है। ये वो कुछ स्टडीज़ है जो बता रही हैं कि 5 ईयर्स पे, 10 ईयर्स पे, इट डू नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ और इवन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स इन स्टेबल पेशेंट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये आया था। फिर दिस इज़ कि भाई जीन्स से, मेडिटेशन और जीन्स से, लैंसेट ऑनकोलॉजी में पब्लिश हुआ था कि CAD, CAD, कैंसर, ओबिसिटी, हाइपरटेंशन, इन्फ्लेमेशन के आप हज़ारों जीन्स को टर्न ऑफ कर सकते हो और प्रोटेक्टिव जीन्स को टर्न ऑन कर सकते हो विद इन 3-4 मंथ्स। तो ये प्रैक्टिकल मॉडल में आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ कि ये जब ये स्टडी प्लान हुई थी 90s में, तो ये ग्लोबल हॉस्पिटल और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस DRDO की बॉडी है जिसके साथ कोलैबोरेशन हुआ था। उस समय DRDO के हेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर गुप्ता ने प्रेजेंटेशन दिया था एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच, एंड फिर ये स्टडी प्लान हुई थी। और इसमें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और JJ हॉस्पिटल एंड ग्रांड मेडिकल कॉलेज, टर्शरी सेंटर्स जो साथ में जुड़े थे, और मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल योगा, इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी समथिंग था ये, तो इसके साथ कोलैबोरेट करके ये स्टडी किया गया था। और ये 2011 में पायलट स्टडी पब्लिश हुआ था, पायलट ट्रायल इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई थी। और 2013 में हमको बताया गया कि वर्ल्ड के टॉप 20 आर्टिकल्स कार्डियोलॉजी के डोमेन के, उसमें आपकी स्टडी नंबर 1 है, most visited by researchers, scientists, and quoted as a proof in their own study, used as a reference. Medical students ne, researchers ne is field mein is study ko as a reference use kiya hai. Matlab worldwide scientists ne ek Indian study ki authenticity ko mana hai. Tabhi ye number one pe aayi hai. Bahut badi cheez hai. Us saal 20 million articles publish hue the, jisme 2 lakh se zyada article cardiology ke field ke the. Aur uske andar ye number one aana ek Indian study ke liye Bharat bahut badi baat hoti hai. Aur 2015 mein bhi bataya gaya ki ye aapki study top 20 mein number one pe hai. अभी ऑलमोस्ट 22 साल से ज़्यादा हो गए. इट वॉज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रायल जिसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट थे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, क्लिनिशियंस थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट सब ने मिल के एक साथ काम किया और इस प्रोग्राम को डेवलप किया. दो ग्रुप्स बनाए गए थे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था. हेल्दी लाइफस्टाइल और कंट्रोल ग्रुप में आप देख रहे हैं लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट और मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज दोनों में सेम है. बस हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप में स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू राजयोगा, उनको राजयोगा सिखाया गया था, बाकी उनका सब कुछ सेम रहता था. राजयोगा की ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई थी. तो आप ये देखेंगे ये उनकी फाइल दोनों की सेम होती थी, हार्मोन्स वगैरह सब कुछ किया जाता था. डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू राजयोगा यहाँ नहीं है. और ऑलमोस्ट 80% जो केसेस थे, HLS इज पिंक, कंट्रोल ग्रुप इज ब्लू. 80% पेशेंट TVD का मतलब ट्रिपल वेसल डिजीज, DVD का मतलब डबल वेसल डिजीज. हार्ट की या तो तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं या दो आर्टरीज ब्लॉक है तीन में से. तो यानी मेजर प्रॉब्लम थी जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको. ये तो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया गया एनालिसिस के लिए वो सब बातें हैं. जो एंजियोग्राफीज थी, एंजियोग्राफी करा के हमारे पास पेशेंट आते थे और प्रोग्राम फॉलो करते थे 6 महीने साल भर तक. और जब उनकी रिपीट एंजियोग्राफी होती थी तो ये ब्लाइंडिंग की जाती थी. हम एंजियोग्राफीज को एनालाइज नहीं करते थे. एंजियोग्राफी करा के जब आते थे तो वो एनालाइज करने वाला पैनल दूसरा था कार्डियोलॉजिस्ट का, वो जो टर्शरी सेंटर्स बताए उनके अंदर. और आते थे जब प्रोग्राम दोबारा रिपीट एंजियोग्राफी होती थी उनकी, तो दो इंडिपेंडेंट एंजियोग्राफर्स ही उनको दोबारा से एनालाइज करते थे कि कितना रिग्रेशन हुआ, ब्लॉक ख़त्म हुआ या नहीं हुआ. और ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया गया था उसको मेजर करने के लिए, तो इसको बोलते डबल ब्लाइंडिंग. एक होता है सिंगल ब्लाइंड, एक है डबल ब्लाइंड. तो हमें पता नहीं होता था, वो कोडेड एंजियोग्राफीज रील्स होती थी और वो एनालाइज की जाती थी दूसरे सेंटर्स पे. तो इसमें देखा गया HLS ग्रुप में, हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप में सिम्टम स्कोर जो है NYHA फंक्शनल क्लास जिसको हम बोलते हैं, 67.6% इम्प्रूवमेंट हुई, सिम्टम्स में कमी आई. नंबर ऑफ नाइट्रेट टैबलेट्स 73.4% डिक्रीज हुआ. सॉर्बिट्रेट की जो गोली जबान के नीचे रखते हैं उसके यूज़ में इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया, जबकि कंट्रोल ग्रुप में बढ़ गया उल्टा. और एवरेज ड्यूरेशन इन एक्सरसाइज ड्यूरेशन, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी 550% इंक्रीज़ हुआ. यहाँ पे सिर्फ 22% इंक्रीज़ हुआ, बट क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया था, 550% उनकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ गई. और एवरेज LVEF हार्ट की पंपिंग पावर, जो मैंने आपको बताया था हार्ट अटैक में मर जाती है, कुछ ऐसे केसेस पे थे जो 20% से जो फेल्ड हार्ट था वो 55% पे आ गया, ऑलमोस्ट नॉर्मल. बट एवरेज सब में देखा जाए, सभी पेशेंट्स का क्यूमुलेटिव 10.09% इंक्रीज था EF में. स्टेम सेल थेरेपी से भी इतना अचीव नहीं हो पाता है. आजकल आपने सुना होगा स्टेम सेल्स डाल दो नया हार्ट बन जाएगा, वो गारंटेड नहीं है, होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है. पर यहाँ पे हार्ट के अंदर कुछ कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, उनको मेडिटेशन करने से वो अपने आप स्टिमुलेट हो गए और उनका क्या कहते हैं नया टिश्यू बन गया, डेड मसल के अंदर भी नया टिश्यू पैदा हो गया और जो लॉस हुआ था EF का वो वापस ऊपर आ गया. नहीं तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, धीरे धीरे वो EF कम होता जाएगा, फेल होता जाएगा हार्ट और इवेंचुअली वो ट्रांसप्लांट पर जाएगा. और यहाँ पर हमने नया हार्ट रीजनरेट किया लोगों ने अपने आप. लिपिड प्रोफाइल में आप देखें कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल में 24% की कमी, यहाँ पे 31% की कमी. गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड घटा, तो लिपिड प्रोफाइल भी इम्प्रूव हुई. वर्सेस कंट्रोल ग्रुप बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था. 464 लीजन एनालाइज किए थे जिसमें देखा गया कि एब्सोल्यूट परसेंटेज पॉइंट डिक्रीज 11.82 हुआ. दिस इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्डेड, इतना रिग्रेशन किसी भी स्टडी में अभी तक वर्ल्ड में नहीं पाया गया है. कुछ लोगों की 100% जो कैल्सिफाइड ब्लॉक्स थे वो भी खुल गए। 100% कैल्सिफाइड ब्लॉक्स को इस स्टडी में कंसिडर ही नहीं किया था, वो इतने हार्ड होते हैं कि उनके अंदर गाइड वायर डालने के लिए भी ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक रोटाब्लेटर आता है उसको डालते हैं फिर वायर डलती है, तो वो भी खुल गए। उनको तो स्टडी में कंसिडर ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि वो खुलेंगे, पर आउट ऑफ 32 सच ब्लॉक्स आई थिंक 19 ओपनड अप, विच वॉज अमेजिंग। मतलब जो रिसर्चर्स थे उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। दैट मीन्स बॉडी अपने आप को किसी भी लेवल पे जाके हील कर सकती है। और 93% ने रिग्रेशन शो किया, 93% पेशेंट्स ने। फिर कुछ एंजियोग्राम्स आप देखें, जो आपको बताया था मैंने एंजियोग्राम कैसे देखते हैं, ये डायमीटर देखें, ये डायमीटर देखें, और ये सडनली नैरो हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लॉक है, डाई फ्लो नहीं कर पा रही है। और ये आप देखें इम्प्रूवमेंट आई है, ये आप देख रहे हैं इतना लंबा डिफ्यूज ब्लॉक है, इसमें आप स्टेंटिंग भी नहीं कर सकते हो, कितने स्टेंट डालोगे, और इसमें इम्प्रूवमेंट आने लग गई है रिपीट एंजियोग्राम में। ये 100% कट ऑफ है जो आपको बताया था, इसके आगे आर्टरी गायब है, तो यहाँ पे ये फ्लो आ गया है, दैट मीन्स इट हैज स्टार्टेड टू ओपन अप ब्लड फ्लो। यहाँ पे भी 100% कट ऑफ है, फ्लो आ गया है, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो इम्प्रूव हुए हैं, यार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये हार्ट का पंपिंग पावर दिखा रहा है, ये 30% हार्ट की पंपिंग पावर है, हार्ट कितना प्रेशर से पंप कर रहा है, 9/11/2000 और आफ्टर द प्रोग्राम 25/10/2001, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर हार्ट की पंपिंग पावर 15% बढ़ गई। अब हार्ट ज़्यादा अच्छे से खून पंप कर रहा है, 30% मतलब हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड EF, डिक्रीज्ड EF, और 45% मतलब हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड EF, मतलब EF प्रिजर्व्ड है, और हमको इसको मतलब बट ही कैन लिव नॉर्मल नियर, इसको 50% के ऊपर ये चला जाएगा अगर ये फॉलो करेगा, तो हमको 50% के ऊपर लेके आना है इसको, बट ऐसा कहीं भी देखा नहीं गया वर्ल्ड में किसी भी स्टडी में, और ना ही स्टेम सेल से। ये देखेंगे इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे 20% EF है, मतलब इट इज़ लाइक बैठे बैठे भी उसके लंग्स में पानी भर रहा है, और ये 50% पे आ गया, ऑलमोस्ट नया हार्ट जनरेट हो गया, कितने अच्छे से पंप कर रहा है। उसमें हार्ट बड़ा था, डायलेट हो जाता है हार्ट जब फेल होता है, हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, यहाँ पे हार्ट का साइज़ भी ठीक हो गया और पंपिंग पावर भी बढ़ गई है। तो इफ़ यू हैव लो EF, ये 100% कट ऑफ था, फ्लो आ गया वापस। और कंट्रोल ग्रुप जिनको राजयोगा नहीं सिखाया गया, जिन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखा, सभी ब्लॉक्स उनके इंक्रीज हुए, वर्स ओवर टाइम वर्सन हुए हैं। ये देखें, इधर देखें, अभी इसको आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे ये देखिए 100% कट ऑफ है, इसके आगे फ्लो ही नहीं है, ये जो ब्लड आता है ये आया और यहाँ पे रुक गया, इसके आगे फ्लो ही नहीं आ रहा है, दिस इज़ अ 100% ब्लॉक्ड आर्टरी, ये निकली और ये ख़त्म, यहाँ से निकलती और ख़त्म हो जाती है। ये है 22/2/2002 और ये 7/8/2003, ये पूरा फ्लो आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्लो निकली ऐसे और पूरा का पूरा फ्लो, आई डोंट नो आपने अप्रिशिएट किया नहीं किया, ये देखिए पूरा का पूरा फ्लो आ गया, जो पहले यहीं तक ख़त्म हो जा रहा था अब ये पूरा फ्लो हो गया, यहाँ पे ही पहले ख़त्म हो रही थी, तो दिस हैज़ ओपन्ड अप विद इन 1 ईयर। और टोटल इवेंट्स आप देखें, इवेंट का मतलब या तो अनस्टेबल एंजाइना होना, या अटैक आना, या बाईपास सर्जरी कराना पड़े, या एंजियोप्लास्टी कराना पड़े, या डेथ हो, इनको हम इवेंट्स कहेंगे, अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक, बाईपास, एंजियोप्लास्टी या डेथ। तो HLS ग्रुप वर्सेस कंट्रोल ग्रुप, HLS ग्रुप में ओवर 2.76 इयर्स सिर्फ 9 इवेंट्स हुए, और कंट्रोल ग्रुप में 38 इवेंट्स हुए, यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ गई ओवर दिस ईयर 2.76 रेंज 0.04 to 3.65 ईयर्स, बहुत ज़्यादा सेफ्टी बढ़ गई है इवेंट्स की, डेथ होने की या अटैक आने की या बाईपास करवाने की या एंजियोप्लास्टी की या अनस्टेबल एंजाइना की। फिर है ये पर्सनालिटी, ये आपको आई थिंक इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे लोगों की पर्सनालिटी चेंज हुई है। टाइप ए बिहेवियर HLS ग्रुप में 13% डिक्रीज हुआ है। दिस इज पर्सनालिटी चेंजिंग बिफोर यू। एंग्जाइटी को नंबर्स में, जो आपसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर्म भरवाए गए आज और फिर दोबारा भरवाएंगे, जब दोबारा आप आएंगे फिर से भरवाए जाएंगे, वो ही ये सब मेजर कर रहे हैं। एंग्जाइटी कितनी कम हुई, डिप्रेशन 44%, एंगर 43%। डिप्रेशन जिन लोगों को होता है 5 गुना हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। एंगर जिन लोगों को होती है उनको 3 गुना हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। एंग्जाइटी वालों को 2 गुना हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। टाइप ए वालों को 2 से 3 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं। और ये सारे फैक्टर्स क्या है, मतलब मोटे मोटे फिगर्स हैं ये सारे फैक्टर्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लायर्स हैं। अगर आपको दो चीज़ें हैं, एंगर डिप्रेशन भी है एंगर भी है, तो 5 × 3 18 times हो जाएगा। अगर आपको एंग्जाइटी भी है तो फिर 2 कर लो, 36 times हो जाएगा वो। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है तो ये मल्टीप्लाई करके इतना मल्टीप्लाई कर जाते हैं, रिस्क इतना बढ़ जाता है। और जो फिजिकल फैक्टर्स है, ओबिसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पहले इनको एडिटिव बोलते थे पर लेटेस्ट रिसर्च कहती है ये भी मल्टीप्लायर्स हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, 3 गुना दोनों का रिस्क होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का 2 गुना ज़्यादा रिस्क होता है, स्मोकिंग का 3.5 गुना रिस्क होता है। तो ये भी मल्टीप्लाई कर लो आप, और ये भी मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर वो फैक्टर्स भी हैं तो आपको कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ गया। हेल्दी लाइफस्टाइल 37% इंक्रीज़, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग में 36% इंक्रीज़। प्रोग्राम एडियरेंस भी देखिए, ऑल द पेशेंट स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल इन HLS ग्रुप। सभी पेशेंट ने अल्कोहल छोड़ा और स्मोकिंग छोड़ी HLS ग्रुप में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वॉज सस्टेन्ड, उन्होंने छोड़ा तो उसको छोड़ दिया, कंट्रोल ग्रुप में भी छोड़ा पर विद इन 2-3 months, 3-4 months उन्होंने वापस स्मोकिंग चालू कर दी, अल्कोहल चालू कर दिया, तो वो बेनिफिट ख़त्म हो गया उनका। बिकॉज यहाँ पे उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट मिल रहा है, एम्पावरमेंट मिल रहा है, तो वो उसको कंटिन्यू कर पाए। तो डाइट को कौन अडेयर ज़्यादा कर पाए, HLS ग्रुप वाले। एक्सरसाइज अडेयरेंस किन्होंने ज़्यादा की, HLS ग्रुप वालों ने। कंट्रोल ग्रुप वालों ने किया बट धीरे धीरे दे ड्विंडल आउट। ये EEG है जो ब्रेन का मैंने आपको बताया था, डेल्टा वेव 2 tracks जाती है। मेडिटेशन से आप डेल्टा अचीव कर सकते हैं या आप स्लीप से अचीव कर सकते हैं। तो नॉर्मल हमारा जो बेसलाइन EEG होता है फर्स्ट डे और सेवेंथ डे पे क्या है। तो बेसलाइन अगर आप देखें, बीटा एक्टिविटी प्रेडोमिनेंट है, दिस इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। 13 के ऊपर की जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ अ बीटा वेव, दिस इज़ मोर प्रेडोमिनेंट। अल्फा कब आती है, जब हम आँख बंद करके शांति से बैठ जाते हैं, सो नहीं रहे हैं पर आँख बंद कर ली, 8 से 13 के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप देखेंगे विद इन 7 days बीटा एक्टिविटी कितनी कम हो गई, और ये सब माइंड यू EEG की हैं, आँखें आईज ओपन के साथ, पर अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज हो गई जस्ट इन 7 days। थीटा की फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7 विच इज़ अ लवफुल रिदम, ये जब हम डीप स्लीप में जाने लगते हैं तब आती है, ब्रेन तब इसको जनरेट करता है। तो इसकी भी एक्टिविटी देखिए 7 days में कितनी बढ़ गई। और डेल्टा मैंने आपको बताया था ब्लेसफुल, 1 to 4 1 to 3 जो एकदम आनंद की स्थिति है। तो ये भी आप देखेंगे, इसको मैं आगे दिखाऊंगा डेटा में, ये भी इंक्रीज होती है पर थोड़ा लेट। तो जस्ट इन 7 days बीटा एक्टिविटी कम हो गई, अल्फा बढ़ गई, थीटा बढ़ गई। और आप देखेंगे विद आईज क्लोज, दिस इज ब्लू इज अल्फा, 140% इंक्रीज इन अल्फा, एंड विद आईज ओपन 163% इंक्रीज इन अल्फा वेव एक्टिविटी। मतलब आपका लेवल ऑफ रिलैक्सेशन बढ़ गया, हम इसको पीसफुल रिदम बोलते हैं, आप ज़्यादा पीस में हैं जस्ट इन 7 days। एंड दिस इज़ ओवर 2 years, बेसल 7 days, 1 year and 2 years। तो आप देखेंगे बीटा इज शोन बाय पिंक, 7वें दिन पे ही बीटा कितनी ड्रास्टिकली कम हो गई, 1 साल पे और कम हुई, 2 साल पे और कम हुई। और आप ये देख रहे हैं ब्लू वाली अल्फा है, 7वें दिन पे ही बढ़ी, 1 साल तक और बढ़ी और बढ़ती गई। येलो इज थीटा, 7th day पे बढ़ी पर 1 साल पे देखेंगे थीटा ने ज़्यादा जंप लिया। जो कुछ पूछ रहे थे मेडिटेशन हमें करना नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग एंड डूइंग इट डेली, तो ये जो डीप स्लीप वेव्स हैं जो डीप स्लीप में आपको आती हैं वो भी आपकी प्रेडोमिनेट होने लग जाएंगी, यानी आप बहुत रिलैक्स रह रहे हो। दिस इज़ अ लवफुल रिदम, 1 साल 2 साल। और डेल्टा भी आप देखें 7th day पे भी ट्रेंड इंक्रीज का ही है 1 year तक, और 1 साल के बाद डेल्टा कितनी बढ़ी एकदम से। यानी जितना जितना आप मेडिटेशन करना सीखते जाएंगे आप उस ब्लिसफुल स्टेट को अचीव करेंगे. एंड इट इज़ द ब्लिसफुल स्टेज डेल्टा स्लीप या डेल्टा मेडिटेशन व्हेन हीलिंग स्टार्ट्स टू हैपन. यहाँ पे आपको वो हीलिंग का स्पेस मिलने लग जाता है, थीटा और डेल्टा में हीलिंग चालू होने लग जाती है. तो विद प्रैक्टिस इट विल कम. दिस इज़ लाइक ये जो लाल तार और ठंडी तार जो है, लाल तार और हरी तार के बारे में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किया जाता है. तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेसिकली क्या होता है, यंग लोगों के हार्ट के अंदर ना एक बीट से दूसरे बीट के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वेरिएशन रहता है. दिस वेरिएबिलिटी इज़ गुड फॉर अस. और जब ये फिक्स्ड होता जाता है जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो इसमें भी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में भी ये हमारे को बेनिफिट हुआ. जो लो फ्रीक्वेंसी पावर है रेड से इंडिकेट की जा रही है, दिस शोज सिंपथेटिक एक्टिविटी. दैट मीन्स जब व्यक्ति हमारे पास आया था बेसल, वो अलार्म रिस्पॉन्स में था, वो डरा हुआ था, टेंशन में था. और जो उसका ये हाई फ्रीक्वेंसी पावर, इसको बोलते हैं बेसल जो था, ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स, ये बहुत कम था. सेवेंथ डे पे ही आप देखो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं. एक साल पे ऑलमोस्ट ये हारमोनी हो चुकी है. दोनों का बैलेंस चाहिए लाइफ में, एक कम हो एक बहुत ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम करेगा. एंड दो साल पे एकदम हारमोनी हो गई है. तो अंदर से आप चेंज हो रहे हैं. इट इज़ जस्ट नॉट पुटिंग अ बलून देन पुटिंग अ स्प्रिंग या हमने एक नया रास्ता बना दिया. आपकी पूरी बॉडी अंदर से चेंज हो रही है. वेदर यू हैव हाइपरटेंशन, यू हैव डायबिटीज़, वेदर यू हैव हार्ट डिजीज़, वेदर यू हैव कैंसर, वेदर यू हैव आर्थराइटिस, आपकी पूरी बॉडी, आप चाहे आपको स्किन पे डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, ये दीज आर ऑल इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इरिटेबल बाउल डिजीज़ है, आंतों में अल्सर है, पेट में अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, ये सब क्या है? दीज आर ऑल इम्यून मीडिएटेड या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं. आपकी बॉडी धीरे धीरे सेट हो रही है, आपका DNA हील हो रहा है. एंड दिस इज़ वॉट इट शोज. एंड स्लोली ये सब चीज़ों को ठीक कर देगा. ऑफकोर्स डॉक्टर गुप्ता एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने हार्ट को मेजरली स्टडी किया, बाकी हॉर्मोन्स और चीज़ों को भी स्टडी किया, पर उनका हार्ट फोकस था. पर बॉडी की हर चीज़ को, डिप्रेशन आपने देखा कितना 45% लोगों में डिप्रेशन कम हो गया, 45% डिक्रीज इन डिप्रेशन. डिप्रेशन कितनी बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में. पुराने लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, यंग लोग जाते हैं आजकल डिप्रेशन में, बिकॉज aims to अचीव excellence इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना है, सब लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या सब्सटेंस अब्यूज करने लग जाते हैं. तो डिप्रेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम और लोग आज भी उसका इलाज लेने से घबराते हैं, डरते हैं, दवाई नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज देर इज़ अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट. तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी आपको हील कर रहा है, फिजिकल लेवल पे तो हील कर ही रहा है. आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में आपको दिखेगा और आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब एंजियोग्राफी कराएंगे तब भी दिखेगा. बट मेंटल लेवल पे ही जो ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग की हमने बात की थी, अंदर से अच्छा महसूस करना, वो भी शुरू हो जाएगा. और ये बेसिकली कैटाकोलामींस है जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन. तो इनका लेवल दिखाया, ये कंट्रोल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है 1 साल पे. और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ डोपामीन, दिस इज़ नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन. तो सेवेंथ डे पे ही लाइफस्टाइल इंटरवेंशन या HLS ग्रुप में सेवेंथ डे पे ही सिग्निफिकेंट डिक्रीज आ गया. 1 साल पे फर्दर गिर रहा है, ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स गिरते जा रहे हैं. दैट मीन्स आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो रहा है, सिंपथेटिक ड्राइव कम हो रही है, लाल तार आपकी कम होती जा रही है. कंट्रोल ग्रुप में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए. दिस इज़ रैंडमाइज्ड एंड दिस इज़ नॉन रैंडमाइज्ड. दो स्टडीज़ थी, एक पायलट ट्रायल थी, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी. तो रैंडमाइज का भी डेटा साथ में है. एंड दिस इज़ सेरोटोनिन, बीटा एंडोर्फिन, दीज आर हैप्पी हॉर्मोन्स. एक जैसे होता है, आपने मॉर्फिन किसी ने यूज़ किया है कभी? मॉर्फिन एक तरह का, जैसे बॉडी बाहर से हम मॉर्फिन लेते हैं, ऐसी बॉडी अंदर से भी एंडोर्फिन्स बनाती है. ये अंदर की मॉर्फिन है. बीटा एंडोर्फिन्स, गामा एंडोर्फिन, अलग अलग तरह के मॉर्फिन्स होते हैं बॉडी में. तो ये जो है सेरोटोनिन है, ये सब हैप्पी हॉर्मोन्स हैं. ये स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर भी है. दिस अगर आपका ये अंदर से निकलने लग गया तो आपके जो बॉडी के एक सौर पेन्स है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर दर्द, ये सब दूर हो जाएगा. दिस विल नॉट बी देयर. आपको एक अच्छी फीलिंग अंदर से आने लग जाएगी. ये भी जब आप मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो निकलना शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो कंट्रोल ग्रुप में कोई खास चेंज नहीं आया है, रैंडमाइज्ड में भी आप देख रहे हैं सेवेंथ डे पे इंक्रीज आ गया है सेरोटोनिन का और बीटा एंडोर्फिन का भी। ये यूरिनरी और प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल्स, ये मैंने आपको बताया था सुबह 8 बजे निकलते हैं और 4 बजे निकलते हैं, तो यूरिन में और प्लाज्मा में 8 बजे भी और 4 बजे भी हमने इनको मेजर किया है। तो कंट्रोल ग्रुप में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, वेराज लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ग्रुप में ओवरऑल ये डिक्रीज होता गया है। ये मॉर्निंग और ये इवनिंग, दिस इज मॉर्निंग सैम्पल, दिस इज इवनिंग सैम्पल एंड दिस इज गोइंग डाउन, यानी कॉर्टिसोल लेवल भी आपके कम हुए हैं, इंसुलिन लेवल भी कम हुए हैं। अब आप सोचेंगे इंसुलिन लेवल कैसे कम हो रहे हैं, इंसुलिन लेवल इसलिए कम हो रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से, कम इंसुलिन से ही आपकी शुगर ज़्यादा कंट्रोल में आ गई, और बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलना भी हमारे लिए हार्मफुल है। ज़्यादा इंसुलिन भी एजिंग को एक्सेलरेट करता है। इफ़ यू हैव टू मच इंसुलिन इन द बॉडी इट टेंड्स टू एज यू फास्टर। तो यहाँ पे कम इंसुलिन हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है और हमारा शुगर कंट्रोल भी बेटर होता जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट शोज़ कि हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी बदल रही है, हमारा पूरा एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा, पूरे हॉर्मोन्स हमारे बदल रहे हैं। और इसका इफेक्ट डीएनए पे भी देखने में आता है। डीएनए में हमारा एक रीजन होता है डीएनए के, हमारे क्रोमोसोम्स के एंड पे, जिसको हम टीलोमियर्स बोलते हैं। और ये टीलोमियर्स जितनी जल्दी छोटे होते जाते हैं उतनी जल्दी हमारी एजिंग होती है। तो जिन लोगों की टीलोमियर्स की शॉर्टनिंग ज़्यादा जल्दी होती है वो जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं, जिन लोगों का टीलोमियर्स का लेंथ मेंटेन्ड रहता है वो कम बूढ़े होते हैं। उनकी बायोलॉजिकल एज होगी 50, बट उनकी जो बॉडी होगी दैट विल बी, क्रोनोलॉजिकल एज विल बी 50 बट देयर बायोलॉजिकल एज वुड बी लाइक 30 ईयर ओल्ड। आपने कुछ लोग देखे होंगे 60-70 साल के भी हैं बट वो ऐसे होते हैं जैसे 35-40 साल के हैं, इतने यंग दिखते हैं, इतने एनर्जेटिक दिखते हैं। अब वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं, स्पेशली जो लोग खूब मेडिटेशन करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी इसी तरह की होती है। वो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी 30 बट वो दिखेंगे कैसे, जैसे 50 के हो गए। तो वो कैसे होता है, वो डीएनए का जो हमारा जो टीलोमियर्स है अगर लेंथ मेंटेन रहेगा तो आपकी एजिंग नहीं होगी। एंड इट हैज़ बीन सीन व्हेन यू मेडिटेट आपकी ये टीलोमियर्स मेंटेन रहती हैं, टीलोमेरेज एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, यू टेंड टू रिमेन यंग। आप एक कप चाय और कॉफ़ी भी लेते हैं ना तो आपकी टीलोमियर शॉर्टनिंग होने लगती है। दैट्स वाई वी से कि मत लो। आप ज़्यादा फ्राइड फूड्स खाएंगे उसमें फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, रिफाइंड फूड्स में जो आपको पैकेज फूड्स मिलेंगे मार्केट में उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल जो पैकेज ऑयल्स आते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब वो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑयल को तो ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, बट वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं क्योंकि वो तेल में है, वो ऑक्सीडाइज मटेरियल फिर भी आपकी बॉडी में ही जा रहा है। तेल में तो वो ख़राब स्मेल नहीं आई आपको रैंसिडिटी की, तेल तो आप कहेंगे ठीक है, पर उस तेल को ओवर 6 मंथ्स, 1 ईयर 2 ईयर्स उसको ठीक रखने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है उसमें, वो ऑक्सीडाइज होता जा रहा है और वो भी आपके शरीर में ही जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको डैमेज कर रहे हैं, बट यू हैव इन योर कंट्रोल व्हाट, योर पॉजिटिव टीम। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी टीम को पॉजिटिव रख सकते हैं हर परिस्थिति में, यही आपके पास, दिस इज़ द ओनली प्रोटेक्शन यू हैव। आपके घर में गेहूं कैसा आ रहा है आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, वो किसान ने क्या पेस्टिसाइड यूज़ किया है, क्या इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, सब्जियों में कैसा पानी यूज़ किया गया है, आप नहीं कर सकते हो कंट्रोल। जो मिल रहा है आपको वही लेके आना है, खुद तो उगाओगे नहीं अभी बैठ के, सबके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ज़मीन लें और उगा लें, टाइम भी नहीं है, तो वो तो आने ही वाला है। हवा में हर रोज़ सड़क पे 13,000 गाड़ियाँ भारत में उतर रही हैं, सड़कें उतनी है, पोल्यूशन तो बढ़ने ही वाला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने ही वाला है। तो आने वाले समय में इन चीज़ों को तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ चेंज आवरसेल्व्स, अपने हम माइंड को चेंज कर ले, अपने थिंकिंग को चेंज कर ले, और टीम को पॉजिटिव रखना कैसे रखेंगे। जानते हम हैं हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत बड़ा फ़ोटो होता है उस पर, कैंसर दिखाते हैं लंग का उसमें, बट फिर भी हम स्मोक करते हैं, वी डोंट स्टॉप इट। हम जानते हैं, हम जितने भी अल्कोहल लेने वाले होंगे कि आपका कोई ना कोई दोस्त सिरोसिस से गया होगा, बट फिर भी हम ड्रिंक करते हैं. इंडियंस में ड्रिंकिंग इज नॉट प्रोटेक्टिव. जो कहते हैं ना एक पैक अच्छा रहता है हार्ट के लिए, दैट इज़ फॉर वेस्टर्नर्स. इंडियंस के लिए वो प्रोटेक्टिव नहीं है. एनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज़ बैड फॉर अस. डोंट थिंक कि वो थोड़ा सा वाइन लेंगे तो अच्छा रहेगा. दैट इज़ गुड. दैट इज़ गुड फॉर वेस्टर्नर्स, नॉट फॉर अस. तो उस मिथ में भी मत रहिए. तो अपने माइंड को हमको पॉजिटिव रखना है तो कैसे रखेंगे, उसको सीखना है. उसकी टेक्निक्स आपको, जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे सिखाई जाएगी, जो अध्यात्म आपको सिखाया जाएगा, उससे आपके अंदर आएगा. वो आपको एम्पावर करेगा. उसकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो आएगा. धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा. देयर विल बी लॉट ऑफ फेलियर्स, बट अगेन अ चेन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स इज व्हाट लीड्स टू हेल्थ. अ चेन ऑफ नेगेटिव थॉट्स विल लीड यू टू डिजीज. जो आपको बताया था, जो सोचा 0.85 सेकंड्स में पूरी बॉडी में चला जाता है. तो क्या मैसेज आप अपने सेल्स को दे रहे हो, आपके हाथ में है. वही टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी ओवर नेक्स्ट 4-5 डेज. अलग अलग तरीके से माइंड में ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी. होप आपके अंदर जाए वो. ओम शांति. अभी वील गो फॉर डिनर. यहाँ से हम डिनर पे जाएंगे और क्वेश्चन वी कैन टेक लेटर, बिकॉज डिनर करके फिर आज क्या है, इनॉग्रेशन भी होगा. तो यज्ञ के सीनियर लोग आएंगे और वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, सौगात देंगे. तो वील जस्ट गो फॉर डिनर फर्स्ट. वी कैन इंडिविजुअली हैव द क्वेश्चन लेट जस्ट नाउ आफ्टर दिस. दिस इज ऑल रैंडमाइज. एक पायलट स्टडी थी, फिर उसके बाद डबल ब्लाइंड रैंडमाइजेशन ही था वो. तो आधा मिनट हम बैठेंगे, देन वील गो फॉर डिनर.